हरे कृष्णा, दिस लेक्चर ऑन भगवद गीता 16 चैप्टर 7 श्लोका गिवन एट राजेंद्र कश्यप प्रभुजीज डॉटर्स मैरिज ऑन 23 जनवरी 2016 बाय माई सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
भगवान के जब भी रेगुलर हमें ये रखना चाहिए, मंदिर में जाएं तो भगवान के गुणगान गाने चाहिए। हाँ, हो सकता है कि हमें बहुत सारे श्लोकाज याद नहीं है तो अपनी प्रेयर्स बना सकते हैं। एक भक्त के पास एक जो शस्त्र है वो क्या है, प्रार्थना। तो अगर पूछेंगे कि कौन सी प्रार्थना प्रभु जी शस्त्र है, तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे प्रार्थना ही नहीं आती कि मैं आपको कैसे प्रार्थना करूं। तो फिर वो प्रार्थना क्या है प्रभु जी, कि जिस प्रार्थना से मैं आपको प्रार्थना करूं, तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ऐसी प्रार्थना बताइए कि जिस प्रार्थना के कारण मैं वो प्रार्थना सीख सकूं कि आपकी प्रार्थना कर सकूं। तो शस्त्र में सूक्ष्म स्तर में प्रार्थना ही है हमारे पास, तो भक्त के पास सिर्फ प्रार्थना है। इसीलिए जितने भी आचार्य हुए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और जितने भी हैं, उन सभी भक्तों ने प्रार्थनाएं लिखी हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर की एक बुक है जिसका नाम है प्रार्थना, तो उसमें उनके अनेकों भजन हैं। कहते थे नरोत्तम दास ठाकुर जब भजन करते थे और उनकी अपनी प्रार्थना लिखते थे, गाते थे, तो पत्थर भी पिघल जाते थे। कोई मतलब वो वाली है नहीं, ऐसी अतिशोक्ति, जैसे अतिशोक्ति बोलते हैं ना, हनुमान की पूछ में लगन न पाया, लंका सगरी जल गई, रही निशाचर भाग, बोलो सेपति रामचंद्र की जय। तो वो सिस्टम नहीं है, ये अतिशोक्ति नहीं है, अलंकार नहीं है, ये फैक्ट है। नरोत्तम दास ठाकुर लकड़ियां पत्थर सब पिघल जाते थे उनके सामने। जब वो भजन करते थे तो गंगा की लहरें ऊंची ऊंची उठती थी, क्यों, वैसा लगता था सुनामी आ गई गंगा के अंदर। क्यों, नरोत्तम दास ठाकुर एक ऐसे भक्त हैं जिन्हें स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपा प्रदान करी। चैतन्य महाप्रभु एक बार स्नान करने के लिए गंगा नदी में गए और गंगा नदी में स्नान कर महाप्रभु जो है वो गंगा नदी उछलने लगी ऊपर, जोर जोर से सुनामी जैसा आ गया और फिर उसमें से देवी निकल कर आई। तो गंगा नहीं थी उनका नाम, जब वो आगे जाती है तो पद्मावती नाम से जाना जाता है बंगाल के आगे। तो पद्मावती रिवर से वो निकल कर आई और वहां एक तमाल वृक्ष था, उसमें निकल कर आई पद्मावती में से। बोलती है कि क्या है ऐसा कारण कि आपके पाँव लगाने से ही मेरी इतनी ऊंची ऊंची लहरें जा रही हैं। तो पद्मावती ने जब सवाल पूछा तो चेतन महाप्रभु ने कहा, क्योंकि ये जो है गिफ्ट है मेरा, कृष्ण प्रेम जो मेरे अंदर है समाया हुआ है, क्योंकि मैं कौन हूँ, राधा रानी का भाव लेके आया हूँ, तो मेरे अंदर जो समाया हुआ वो है कृष्ण प्रेम, तो ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो उसने खुश हो गई पद्मावती, मुझे कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए नहीं है, कुछ ही दिनों में एक भक्त आएगा जो कि नरों में उत्तम होगा, मनुष्यों में उत्तम कैटेगरी का होगा, उसको तुम ये दे देना। और फिर वो नरोत्तम 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 कहकर जल में क्रीड़ा करने लगे और सारे भक्त श्रीवास ठाकुर और अनेक पार्षद सोचने लगे क्या हो गया आज, चैतन्य महाप्रभु जो है वो ऐसे हो रहे हैं। और फिर उनको वहां से निकाल के लाते, बहुत लंबी लीला है, किसी दिन भागवतम क्लास में पूरी सुनाऊंगा। तो उस तरह से फिर वो ले आते हैं उनको निकाल। और फिर जब नरोत्तम दास ठाकुर 12 वर्ष के हो जाते हैं तो रोज उनका नियम था, स्कूल से आते थे, स्कूल बैग फेंकते थे और कृष्णदास नाम के एक बाबा जी रहते थे उनके पास जाते थे, कहते थे बाबा जी मुझे कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। तो भागवत के बड़े प्रकांड विद्वान थे कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनको रोज कथाएं सुनाते थे। एट द एज ऑफ  12 12 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि अब बहुत हाइट हो गई, अभी तो मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए और कुछ मन ही नहीं लगता, बस महाप्रभु के चरण में रहने की इच्छा है। हरे कृष्ण, तो महाप्रभु के चरण में रहना चाहते हैं। हरे कृष्ण, इधर आ जाइए, लॉट्स ऑफ स्पेस है। आइए, आनंद प्रभु जी की जय, आवा माता जी की भी जय। तो इस प्रकार से जब 12 साल की उम्र में नरोत्तम दास ठाकुर निकले वहां से उस स्थान से और वो जाकर गंगा नदी में जैसे ही पांव टच किए तो क्या हुआ, अगेन सुनामी, दोबारा से सुनामी आ गई। तो वो बोलने लगे क्या हुआ आज मेरे पांव डालते ही इतनी ऊंची ऊंची गंगा की लहरें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि गंगा की लहरों का क्या कारण है, गंगा की लहरों का कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आपके लिए कृष्ण प्रेम प्रदान करके गए हैं, तो ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने के कारण आज ये ऊंची ऊंची लहरें, तो तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ के गए थे महाप्रभु, क्योंकि जब नरोत्तम दास ठाकुर आए तो महाप्रभु नहीं थे उस समय में, तो उनके लिए कृष्ण प्रेम प्रदान करके गए और कह के गए हैं कि आप जाओ वृंदावन और वृंदावन में आपको एक गुरु मिलेंगे जिनका नाम है लोकनाथ दास गोस्वामी। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। और जैसे वो गंगा नदी से बाहर निकले तो उनके दोस्त देखकर हैरान हो गए, तमाल वृक्ष के नीचे एक लड़का था जो कि गोरे रंग का था, वो आया और उसने दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद वो उनके बॉडी में एंटर कर गया और नरोत्तम दास ठाकुर का कलर डार्क कलर से गोल्डन कलर हो गया और सारे लोग हैरान हो गए कि आज इतना सुनहरा रंग कैसे हो गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर के पेरेंट्स भी आए देखने के लिए, आज ऐसा क्या हो गया जो कि इतना सुंदर रंग आपका आ रहा है नजर, एकदम सुंदर सुंदर नजर आ रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो उनके पेरेंट्स तो राजा थे उस समय के, राजा महाराजा के घर का बेटा था वो। तो उन्होंने कहा अब मेरी और कोई इच्छा नहीं, बस एकमात्र इच्छा है कि मैं वृंदावन चला जाऊं लोकनाथ गोस्वामी के पास। तो वो आते हैं लोकनाथ महाराज के पास में, तो लोकनाथ वृंदावन में रूप सनातन के साथ में विराजमान थे। तो आज भी हम जाते हैं वृंदावन में, एक मंदिर है श्री गोकुलानंद मंदिर, पता नहीं आप लोग गए कि नहीं। गोकुलानंद मंदिर छोटा सा टेम्पल है, वहां पर सभी आचार्यों की समाधि भी है, और वहां पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का वो जो गिराज शिला उनको दी थी, और गुंजा माला मतलब जो तुलसी माला थी वो भी रखी हुई है वहाँ पे आज भी, मतलब वही गिराज शिला नीचे लिखा है रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई ओरिजिनल, आप टच करके देख सकते हैं उनको, तो महाप्रभु का हाथ से टच करी हुई गिराज शिला छोटी सी है, रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी, और वहाँ लोकनाथ गोस्वामी रहते थे, उनकी सेवा करते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी द्वारा पूजित विग्रह भी है वहाँ पे, तो उनको कहा आप जाइए उनसे शरण लीजिए। अब वो आए तो कहते मैं तो कौन हूँ, दासों का दास हूँ, मैं कैसे गुरु बन सकता हूँ, तो मैं दीक्षा देने योग्य नहीं हूँ, जाओ यहाँ से जाओ। और बेचारे उनके पीछे बढ़ गए, दीजिए दीजिए मुझे तो भेजा है महाप्रभु ने भेजा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रार्थना, प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर लोकनाथ गोस्वामी ने कहा ठीक है तुम मेरे साथ रह सकते हो पर दीक्षा के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तो वो क्या करते थे कि जब उनके गुरु जंगल में जाकर मल त्याग करते थे तो वो जाकर उस जगह को साफ करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर राजा के घर का लड़का वृंदावन में जाकर मल उठा रहा है वहां पे, है ना, जमादार का काम कर रहा है वहाँ, हमारे महाराज बोलते भंगी का काम कर रहे थे, तो जमादार का काम कर रहे हैं, उठा रहे हैं वहां से और अपने गुरु की वहां पर मल हटा रहे हैं और फिर वहां पर नई मिट्टी लगा रहे हैं कि कल ही आएंगे यहाँ पर स्टूल पास करने के लिए, इस तरह की सेवा की भावना। तो वो रोज सोचते थे ऐसा कौन है जो कि मल उठाकर ले जाता है यहाँ से, बिल्कुल गंदगी नहीं रहती यहाँ पर, सफाई हो जाती है जब मैं रोज जाता हूँ। तो पता चला नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो सेवा करते हैं। फिर वो जब उन्होंने बुलाया और बहुत रोने लगे, बोले कि क्या बात है नरोत्तम तुम इस तरह की सेवा कर रहे हो, तो बोले कि दीक्षा मिले ना मिले गुरु की सेवा मिलना उत्तम है, इसीलिए उन्होंने कहा इसलिए तुम्हारा नाम नरोत्तम है क्योंकि तुम नरो में उत्तम हो, जिसकी भावना इस प्रकार की है, जिसकी भावना इस प्रकार की है कि वो भगवान की, भगवान के भक्त की सेवा करना चाहता है। तो भगवान भी कहते हैं मैं जो मेरा भक्त है उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ, जो मेरे भक्तों का भक्त है मैं उससे अति प्रसन्न होता हूँ। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर भी सिखा रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर ने भी सिखाया द ओनली वेपन ऑफ अ वैष्णवा प्रेयर्स। तो अगर प्रेयर्स हमें नहीं आती वैसे तो आनी चाहिए, श्लोकाज आनी चाहिए, जब भी भगवान के सामने जाए तो बोलना चाहिए चिंता मणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीरभीर पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम आदिपुरुषम तम अहम भजामि। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कोई भी आपको जो आती है, दैट श्लोका शुड बी चैंटेड इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, भगवान का ग्लोरिफिकेशन, और फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जितने भी भक्त मुझसे जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, भगवान आप उन पर अपना अनुग्रह करिए, अपनी कृपा करिए। क्या करें वो, किस लिए अनुग्रह करिए, क्या लक्ष्मी मिल जाए,
वो भी जुड़े हैं आपसे, वो भी
भाग जाए मंदिर से,
नहीं,
वो अभी आपको जो भूल गए हैं, हाँ भूलिया तुम्हारा संसार आसिया, संसार को जुड़ गए और भगवान को भूल गए। बोला जाए माला कितनी करते हैं तो दिक्कत रहती है, हर कितनी माला चल रही है, दो माला चल रही है, चार माला चल रही है या फिर नहीं चल रही है। तो हमें ये जो है हरिनाम के प्रति शरणागति हो, ये प्रार्थना सभी करनी चाहिए। कलयुग में तो भगवान सिर्फ हरिनाम के रूप में विराजमान है, तो इसलिए उनके शरणागति हो हर एक व्यक्ति, ये प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक वृंदावन में एक डिवोटी है, उनसे भक्त आकर बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे लिए प्लीज प्रेयर करिए, जैसे एक दूसरे से बोलते हैं सब लोग वैष्णव में, कुछ सीखे ना सीखे बोलना तो सीखे जाते से बढ़िया। तो एकदम एक्सपर्ट स्पीकर होते हैं सारे वैष्णव संप्रदाय में जुड़ते ही 6 महीने में सब बढ़िया, अरे प्रभु जी आपकी कृपा दे करते हो तुम, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो बड़ा अंदर से उसको अहंकार होता है, अरे मेरे कारण ही तो हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, सबको बोलना आता है, तो वो भी भक्त जाते हैं उनको बोलते हैं, ब्रह्मचारी हैं वो, तो बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा सब कुछ अच्छा चले, हम भी वृंदावन वासी हो, कोई चाहता नहीं वृंदावन वासी बनना, ले जाए सौरभ प्रभु को तो सोने माता जाएंगे मंदिर में वृंदावन वासी बना दिया, कह रहे यही तो प्रार्थना करते थे रोज। कोई चाहता नहीं एक्चुअली वृंदावन वासी बनना, तो हाँ ठीक है प्रार्थना करते हैं, उसमें मिश्रित भक्ति होती है, थोड़ा थोड़ा दिल्ली में रखिए, थोड़ा थोड़ा वृंदावन में। और कई कई तो तुलसी के आगे परिक्रमा करते देखे हैं, मोर ऐ अभिलाषा लंदन विच दियो वास। अभिलाष कुंज में वास तो चाहिए नहीं जी, कौन रहेगा मिट्टी में आके, वहां पे जो मिलना है। प्रभुपाद जी भी तो गए कि नहीं गए विदेश, हम भी चले जाएंगे विदेश भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद जी प्रचार करने गए, अपने मजे के लिए नहीं गए हैं, सेंस एंजॉयमेंट के लिए। तो ये संसार को भूलने के कारण वृत्ति है। तो बोलते हैं कि आप ठीक है मुझे दे दीजिए, तो बेचारे नाम लिख लेते हैं भक्तों का ना, पेपर पेन रखते हैं पॉकेट में, आपका नाम हाँ तो सौरभ प्रभु लिख लेंगे, क्या करते हैं हमें डॉक्टर। अब रोज जब लेक्चर के बाद, जब भगवत गीता के बाद, प्रवचन के पहले या बाद में जब जाएंगे प्रार्थना करने, तो ठाकुर जी जाएंगे पहले तो उनका गुणगान करेंगे, हे श्याम सुंदर आप इतने अच्छे हैं, हे गौर नेता, हे कृष्ण बलराम वाह क्या खूबसूरती है आपकी, वाह क्या नूर है आपका, है आपका नूर के आगे सारे एकदम तंदूर है एकदम आपके नूर के, इस तरह से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में फिर दूसरों के लिए जो पब्लिक है उनके नाम की लिस्ट निकालेंगे, है तो सब बोलेंगे फिर ऋतु माता जी, सौरभ प्रभु जी, आभा माता जी, सब भक्त बने, सब अच्छे भक्त बने, ऋतु माता जी और डिवाइस करे, और आभा माता जी 16 माला करे, 16 माला रोज प्रार्थना करेंगे भगवान के आगे। ये एक्चुअली प्रोसीजर है, हर एक भक्त को करना चाहिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो ईसाई धर्म सिखाते हैं दूसरों के लिए, पहले इस्कॉन में आने से पहले मैं जैसे बताते ना घाट घाट का पानी पीते, तो मैं पहले चर्च भी जाता था रेगुलरली पादरी प्रोग्राम्स भी अटेंड किए मैंने, बहुत सारे कैंडल्स भी जलाई, इवन क्रिसमस पे प्लेस भी किए उनके, तो मतलब पूरा अच्छे से जाता था वहां पे। तो वहां पे मैंने सीखा, क्या चीज सीखी वहां पर, कि दे लव एक्चुअली ईच अदर बहुत। वो बोलते थे जो मदर थी वहां पे जो प्रेयर कराती थी, फादर एंड मदर, तो बोलती थी कि है ना जस्ट कीप योर हैंड ऑन अदर्स शोल्डर्स, दूसरे के कंधे पे हाथ रखिए, और हाथ रख के हाथ रख के हाथ रख के फिर कहते थे कि अभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, नॉट फॉर मी, ओ माय लॉर्ड प्लीज सेव दिस पर्सन जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा है, प्लीज मर्सी ऑन हिम, कभी ये नहीं बोलेंगे प्लीज मर्सी ऑन मी। तो इस अहंकार से ऊपर की सेवा जो है वो करते, मतलब सोचिए ये धर्म है। गुरुद्वारे में जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे जो साथ में स्टूडेंट्स थे लड़कियां ज्यादा थी, तो वो ले जाती थी कहाँ, गुरुद्वारे, गुरुद्वारे में वो बांध के जाते ना पटकड़, मुझे समझ में नहीं आता था ये झाड़ू लेके क्या करते रहते हैं, चंवर तो पता नहीं था चंवर बोलते हैं, और ये भी नहीं पता था ये गुरु ग्रंथ साहिब है, तो उनको भी नहीं पता होता सरदारों को भी नहीं पता होता, आपको पता होगा सबको नहीं पता होता। वो वहां जाते हैं सिर्फ किस लिए, लंगर खाने, लंगर खाने, मथा टेकने, प्रसाद लेने, और फिर ज्यादातर मैक्सिमम देखे मैंने सरदार वो जाते हैं लड़कियां ढूंढने के लिए शादी के लिए, वोटी नहीं मिलती तो फिर वो चले जाते हैं किस लिए, फिर जाते हैं वहां पर गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे जाकर लड़की लड़के एक दूसरे को ढूंढते हैं, ए वाली अच्छी है, और उसके बाद में उसके आपके पापा मम्मी कहाँ है, बेटा बेटा जी ए वाली चंगी है, ए वाली चंगी है, और फिर ढूंढते हैं नेक्स्ट टाइम आपके मम्मी पापा को लेके आइएगा। तो गुरुद्वारे में सिस्टम यही है, पर उनके अंदर एक चीज सीखने लायक है, सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव। कोई भी व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति मिले मुझे जिनका करोल बाग में बहुत बड़ा व्यापार है, लाखों करोड़ों का व्यापार है, पर वो गुरुद्वारा बंगला साहिब जब जाएंगे विदाउट शूज, नंगे पांव, गाड़ी व ड्राइवर आगे चलता है, रिटर्न में जल्दी जाना है शॉप पे, लेकिन अपने घर से गुरुद्वारे पैदल नंगे पांव, अरे वो बोलते ये भी तो तीर्थ है, जरूरी है कि हम जो है गोल्डन टेम्पल जाएंगे तभी तीर्थ है, मतलब हम वृंदावन जाए तभी तीर्थ है, रुक्मणी द्वारकाधीश भी नंगे पांव जाकर हम अपनी थॉट कॉन्शियसनेस में तीर्थ सोच सकते हैं, इस तरह से वो बताते हैं। तो ये गुरुद्वारा से सीखना चाहिए सेवा, और इस्लामिक धर्म के लोगों से भी हमें सीखना चाहिए, इस्लामिक धर्म के लोगों के अंदर कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी मतलब दृढ़ता, पांच टाइम का नवाज, तो पांच टाइम का नवाज, जब हम ऑफिस में थे तो ड्रॉअर के अंदर और एक जो सबके लॉकर्स होते हैं पर्सनल लॉकर के अंदर वो एक दरी रखते थे अपने लिए और टोपी रखते थे अपने लिए, और 2 बजे एकदम हल्ला बोल, 2 बजे एकदम बंद, लैपटॉप ऑफ करके सारा सिस्टम डाउन और सब गायब, सारे मुस्लिम जितने भी थे, शाहनवाज था एक लड़का वो, और बहुत सारे लड़के गायब हो जाते थे, कहाँ चले गए सारे के सारे, नया नया गया था मुझे मालूम नहीं था, बाद में पता चला सब नवाज पढ़ते हैं। उनके लिए जो ऑफिस का प्रेयर रूम होता है वहाँ दरी बिछाते और प्रेयर करते थे, सोचिए आप दरी, एक भगवत गीता दे दीजिए माता जी हिंदी में, दरी बिछाकर वो प्रार्थना करते थे भगवान से, फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते तो 2 बजे का तो पक्का, फ्राइडे तो मतलब इधर से उधर हो जाए नहीं। वैसे ही हमारा संडे के दिन जो है वो आश्रय क्लास है, ये समझ लीजिए आपकी शुक्रवार की नमाज है 2 बजे की। इसमें आना ही चाहिए रहते को दृढ़ता पूर्वक। भाई वहां पे क्या होता है, आपने कभी नमाज अटेंड किया? मैंने वो भी अटेंड किया। नमाज में क्या होता है, जब 2 बजे फ्राइडे को प्रोग्राम होता है, इतनी भीड़ होती है, क्या होता है वहां पे, एक्चुअली इट्स अ कॉन्ग्रीगेशनल नमाज, कॉन्ग्रीगेशन मिलकर इकट्ठे, जैसे हम संडे लव फीस करते हैं, दे डू फ्राइडे आफ्टरनून लव फीस, उसमें मौलवी साहब आते हैं और मौलवी साहब लेक्चर देते हैं, पहले प्रेयर्स होती हैं, कीर्तन होता है, उसके बाद में कीर्तन होता नहीं, वो लोग बोलते हैं उसको नमाज, कलमा पढ़ा जाता है, आयतें पढ़ी जाती हैं, और आयतें और कलमा पढ़ने के बाद में वो जो टाइम आता है 2 बजे, तो फिर मौलवी साहब तो फिर मौलवी साहब उसको क्या है, क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं। तो मैं एक दिन सुन रहा था जोर जोर से उनका लेक्चर बाहर खड़े होकर मस्जिद के बारे में, क्या सुनना तो चाहिए, क्या बोलते हैं भाई, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना पड़ता है हमको प्रीचिंग के टाइम पे। तो वो बोल रहे थे, आज अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। तो मैं कहा, यहाँ तो मैं भी बोल सकता हूँ। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। फिर एक दिन आएगा जब आपको बोलते हैं उसमें ले जाया जाएगा, नहीं नहीं जहन्नम दोजख नहीं, वो तो है ही है, उससे पहले जो जजमेंट डे है उसको कयामत नहीं, जजमेंट डे को बोल रहे थे कुछ, क्या बोलते हैं जजमेंट डे को बोल रहा था व्यक्ति, मैं सुना तो मैं समझ गया कि जजमेंट डे की बात कर रहे हैं, जजमेंट डे ग्यारत या पता नहीं दैजत पता नहीं क्या ग्यारत पड़ेगी या ऐसा बोल रहा था कि वो ग्यारत पड़ेगी और फिर व्यक्ति की शरीर से निकाल कर उसको ले जाया जाएगा और फिर वो खड़ा होगा वहां पर, बड़े मौलवी होंगे यमराज के बड़े मौलवी, और बड़े मौलवी निर्णय लेंगे कि ये दोजख में जाएगा कि जन्नत में जाएगा, जन्नत में हूर मिलेगी और दोजख में लंगूर मिलेंगे। अच्छा प्रीचिंग कर रहा था, तो आधा घंटा मैंने उसका लेक्चर सुना, वही पे कार खड़ी करके साइड में मस्जिद के, मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहा है, तो डरा रहा था एक्चुअली उसमें, तो वैसे ही प्रीचिंग। लेकिन उनकी चीज ये क्या है, दृढ़ता। तो देखिए धर्म के अंदर प्रार्थनाएं से सीख सकते हैं हम, तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो क्या है, जो किसी के पास नहीं है, प्रार्थना। हमारे पास प्रार्थना है एक्चुअली, इतने सुंदर भजन और किसी के पास नहीं है, इतनी ताकतवर प्रार्थना है हमारे पास, हम ही गाते हैं, तुम्हें व माताश्च पिता तुम्हें व, तुम ही सखा हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, ये प्रार्थना बचपन से बोल बोल के, तो प्रार्थना है पावर टूल है हमारे पास में। उनके पास गुरुद्वारे में सेवा, इस्लामिक धर्म के पास में दृढ़ता, और ईसाई धर्म के पास में क्या है, मर्सीफुल टूवर्ड्स अदर्स, सबके लिए प्रेम, सबके लिए प्रेम। इसीलिए मदर टेरेसा जैसी मदर टेरेसा टेरेसा बन जाती हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए शरीर के स्तर पर काम करती हैं। तो वो समझे नहीं, उनकी फिलॉसफी कहीं पर गड़बड़ है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हर धर्म के अंदर अच्छी तरीके से बताई गई है, क्योंकि धर्म का प्रचार करने के लिए आए तो भगवान के ही दूत थे, भगवान के बच्चे, भगवान के अंश तो आए, तो भगवान से अलग बातें नहीं करेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि संसार को भूल गया हूं मैं और अब आपसे अपनी व्यथा करने जा रहा हूं। क्या व्यथा है, जननी जठरे छिला माया खन विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंचिले आई दीन दासे। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फलस्वरूप आपने मुझे दर्शन दिया, परंतु उसके पश्चात मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया। तो जब मैं माता के गर्भ में था, तो माता के गर्भ में व्यक्ति उसी दिन आ जाता है जिस दिन जो है पहली बार पति और पत्नी अपना संग करते हैं, और उसी दिन पर एंटर कर जाती है वो आत्मा उसी गर्भ के अंदर, उसी पर्टिकुलर नाइट, उसी पर्टिकुलर डे, उसी दिन वो आत्मा वहां एंटर कर जाती है। अभी लोग सोचते हैं कि एबॉर्शन टैबलेट्स खाते हैं या एबॉर्शन मैकेनिज्म में जाते हैं तो उनको लगता है, लोग बोलते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं आजकल के वैज्ञानिक, 3 महीने तक तो जान होती नहीं, आत्मा नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक, सौरभ प्रभु आप इधर आ जाइए, आप इधर आ सकते हैं, तो 3 महीने तक आत्मा नहीं होती है, ये गलत थॉट है एक्चुअली। तो आत्मा तो उसी दिन एंटर कर जाती है जिस पर पति और पत्नी ने संग किया, तो ये नहीं है कि 3 महीने बाद जाकर वो आत्मा बनेगी और फिर शरीर बन गया फिर उसके बाद आत्मा एंटर करती है, ऐसा नहीं। आत्मा होती है फिर उसकी कवरिंग होती है शरीर, ग्लव्स पहले बनते हैं या हाथ पहले बनता है, हाथ पहले बनता है, इसी तरह से हाथ पहले मीन्स आत्मा पहले फिर शरीर बनता है। तो ये गलत थॉट है कि जब पता चला माता को कि अरे अभी तो 1 ही हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं, मुझे पता चला कि मैं जो हूँ गर्भवती हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके बाद मैं अबॉर्शन करा दूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, आत्मा तो 3 महीने बाद एंटर करती है। गलत थॉट है, गलत ख्याल है, विचार ही गलत। तो कह रहे माता की गर्भ में जब होते हैं मेरे कर्मों के फलस्वरूप आपने मुझे दर्शन दिया। तो भगवान कहते हैं नारद मुनि की प्रार्थना पे हर एक जीव आत्मा को उसके कर्मों का लेखा जोखा 8वें महीने में दिखाया जाता है। तो 8वें महीने में अपने कर्मों का जब लेखा जोखा वो देखता है तो कई बार इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो 8वें महीने में ही डिलीवरी हो जाती है, जैसे थे ना प्री मेच्योर डिलीवरी। इतना घबरा जाता है देखकर कि उससे रहा ही नहीं जाता, वो पैर पेट में पटकने लगता है अपने शरीर को कि बस मुझे बाहर निकाल दो, थोड़ा रहा है। तो वहां पर वो एक चीज बोलता है, नॉर्मल अगर रूटीन से कोई डिवोटी व्यक्ति या कोई अच्छे पुण्य कर्म वाली आत्मा है तो कि अब मैं बाहर जाकर क्या करूंगा, भजन करूंगा, बस भोजन भी करूंगा पर इतना करूंगा जिससे आत्मा और शरीर मेरा साथ में रहे, भजन करूंगा। मैं अभी पढ़ रहा था प्रभु जी, आनंद प्रभु जी चित्रकूट में एक आश्रम है, आप तो गए होंगे, मैं तो सिर्फ पढ़ा है। वहां पर 40 साल से हरिनाम कीर्तन 24 आवर चल रहा है, 40 ईयर्स आज रीडिंग अबाउट की चित्रकूट, हाँ जानकी कुंड के पास, हाँ बिल्कुल 40 साल से। और एक है जहाँ पे 24 साल, 24 दो आश्रम उन्होंने लिखे है, 24 साल से हरिनाम चल रहा है, बंद ही नहीं हुआ। एक भक्त बंद करता है तो दूसरा जब मृदंगा लेके हरे कृष्ण शुरू कर देता है करताल ढोलक लेके, तब फिर दूसरा उठकर जाता है। कंटिन्यूस 40 साल से हरिनाम चल रहा है, ये जीवन का हम आए इसीलिए भजन करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं मोमेंट द मोमेंट वी कम आउट ऑफ दैट बॉडी, माँ के गर्भ से जैसे बाहर आते हैं, इस इंडिपेंडेंसी जैसी मिलती है शरीर को, फिर धीरे 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 भूलना शुरू हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और वो हंसता है, देखा आपने हंसता है, तो हंसता क्यों है, वो अपने अपने पूर्व जन्म के कुछ रिश्तेदारों को देखकर हंस रहा होता है। कोई लोग बोलते हैं अरे भय माता है, इसमें खिलाने वाली आई है, इसकी देवी खिला रही है इसको, खिलाता खिलाता कोई नहीं है, उसको पुराना याद आ रहा होता है। तो फिर बोलते भूल कैसे जाता है वो, तो धीरे धीरे पल 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 दिन पे दिन उसकी मेमोरी लॉस हो रही होती है, दिन पे दिन। अभी अभी वो देख कर आया था, अगर अभी जुबान मिल जाती ना बच्चे को, जैसे ही वो दिखला गर्भ से बाहर, अगर जुबान मिल जाए तो क्या बोलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पर प्रॉब्लम क्या है, गर्भ से बाहर निकलने के बाद में जुबान नहीं है, 1 साल लग जाता है जुबान आने में, 1.5 साल लग जाता है। और जब तक जुबान आती है तब तक तो फिर मम्मा पापा इतना कुछ भर देते हैं, बेटा देखो चाचा है, तावा है, हम खाओ सोने के सिक्के से खाओ, अन्न प्राशन करो, ये करो वो, हाँ ए फॉर एप्पल, देखो देखो हंसा हंसा, ये देखो कार्टून, देखो ये देखो सेंटा क्लॉज बनेगा, पता नहीं क्या क्या भक्त बनेगा, कोई नहीं पता था। ये सब करते रहते हैं। तो उस समय मैंने सोचा था कि जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा, तब मैं आपकी आराधना करूंगा, परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया क्योंकि मैं माया के जाल में फंस गया, वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेश मात्र भी नहीं है। तो उस समय मैंने सोचा कि बस गर्भ से बाहर आऊंगा तो भगवान का भजन करूंगा, आपकी आराधना करूंगा, परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया और माया के जाल में फंस गया। तो माया का जाल क्या है, माँ माया है, पापा पापी है। सच बात है, जो माँ अपने बच्चे को ये नहीं सिखा रही है कि भक्ति करो, जो पापा अपने बच्चे को ये नहीं सिखा रहे कि भक्ति करो, वो माँ माया है, पापा पापी है। सच बात है ये। और इसीलिए अगर हम इसको संस्कृत में समझे, पहले भी कई बार हमने चर्चा करी है, तो माँ माँ पापा, बच्चा बोलता हुआ पैदा होता है, मम्मा पापा मम्मा पापा, तो मम्मा मतलब मेरा और पापा मतलब पाप, मेरे पाप के कारण मुझे दोबारा जन्म मिल रहा है। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं आदरे रछेले स्वजने रकोले हसिया कटानु काल, जनक जननी स्नेहिता भूलिया संसार लगी लभाल। पेज नंबर 46। मैं एक लाडला पुत्र बन गया तथा अपने रिश्तेदारों के मध्य अपना समय व्यतीत करता हुआ आनंदित रहने लगा। बस अभी मैं अपने रिश्तेदारों के बीच में 5 वर्ष का हो गया, कोई ए फॉर एप्पल खिलाता था, कोई बी फॉर बॉल खिलाता था, कोई खाना खिलाता था, कोई गेंद खिलाता था, और रिश्तेदारों के मध्य अपना समय व्यतीत करने लगा और दिन पे दिन और बड़ा होने लगा। इस प्रकार मैं अपने माता पिता के वात्सल्य में पूर्णतः डूब गया। मेरे मम्मी पापा से अच्छा तो कोई नहीं है, और ये मटेरियल वर्ड जिसको बोल के आया था दुखलम संसार, अब लगने लगा कैसा संसार है लागे भाल, सुंदर लग रहा है बड़ा, कितने अच्छे लोग हैं, मम्मी पापा है मेरे, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए खाना लाते हैं, मेरा ये करते हैं, मेरा वो करते हैं, और धीरे धीरे वो इसी संसार में डूबता जा रहा है। इस प्रकार कहते हैं क्रमा दिना दिना बालक हैया, और बच्चा अब क्या हो गया, बालक हैया खेलिनु बालक सहा, आर किछु दिना ज्ञान उपजिला पाठ पढ़ी आहरा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन में बड़ा हो गया, अभी 5 साल से कितने का हो गया, 15 का हो गया, और अन्य किशोरों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट फुटबॉल बैट बॉल बस यही सारा टाइम। और कुछ समय पश्चात जब मैं कुछ और अधिक परिपक्व हुआ तो मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा, अभी सब बोलने लगे बस बन जाओ क्या पीएमटी, पीएमटी क्लियर करो, सीए बनो, डीसी इंजीनियरिंग करो, आईआईटी इंजीनियरिंग करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पैसे कमाओ, चाहे आगे जाके किडनी बेचो वो अलग बात है, पर बनो डॉक्टर इंजीनियर बनो, चाहे ऐसे पुर्जे खोल दो ये गाड़ी एक बार आए तो इतनी का एक्सीडेंट होना निश्चित हो, ऐसे तरह का ख्याल हो तो संस्कार ना हो, बस पढ़ाई करो और पैसे वाले बनो। फिर आगे कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, विद्या र गौरवे भ्रमी देश देशे धना उपार्जन करी, और विद्या के उसके अंदर में अनेकों अनेकों देशों में भ्रमण करने लगा, स्वजन पालन करी एक माने भूली न तो मार हरी, और उनके साथ है भगवान हरि, अपनी शिक्षा के अहंकार वश में एक स्थान से दूसरे स्थान में धन उपार्जन करता हुआ भ्रमण करने लगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई भी विदेश जाना चाहता है, कोई लंदन में सेटल होना चाहता है, कोई स्विट्जरलैंड में, कोई अमेरिका में, कोई जॉब चेंज करना चाहता है, प्रमोशन चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है, किसके वश, अहंकार वश, कि मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, और मैं अपने पारिवारिक सदस्यों का अत्यंत सावधानी पूर्वक पालन पोषण करने लगा, और बड़े ध्यान से अपने परिवार के लोगों का पालन पोषण, पालन पोषण कौन करने लगा, मैं करने वाले कौन है, भगवान, तो फिर हम कहां से आगे पीछे, लेकिन हम अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, हमेशा हमें ये लगने लगता है वी आर द डूअर्स, वी आर द डूअर्स, लेक्चर सुन के जाते हैं तो शाम तक तो बड़ा अच्छा रहता है, कीर्तन भी सुनते हैं, वी आर, एक प्रॉब्लम है छोटी सी, तुरंत हमारा साथ छूट जाता है भगवान का, तुरंत छूट जाता है। आप देखिए अभी एक व्यक्ति से मिले थे, वो बोल रहे थे ये रियलाइजेशन है लोगों के, यही हमारा जो आश्रय है उसका अर्थ ही यही है, कथा कीर्तन या रीडिंग हियरिंग नहीं है, यहाँ का ये रियलाइजेशन शेयरिंग, हर एक व्यक्ति को अपने आत्म साक्षात्कार का, मैं कितना आत्मा को समझ पा रहा हूँ, आत्मा के स्तर पर जा रहा हूँ अंदर की तरफ, इनवर्ड प्रोसेस मेरा कितना है, ये रियलाइजेशन शेयरिंग इज आश्रय है एक्चुअली, एक गुरु एक परंपरा का आश्रय, और उस आश्रय में सब भक्त अपने अपने रियलाइजेशन बताएं, और अगर हम रियलाइजेशन स्तर पर आएंगे आत्मा के तो देखेंगे हम सब भाई बहन है कि नहीं है, कभी कोई परिवार में कोई दुख दर्द नहीं आएगा, किसी के शारीरिक द्वेष हमको नहीं सताएंगे, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कर दिया, मैं नहीं आऊंगा जी आश्रय क्लास में, जी क्या हो गया, बोले इसने ऐसा बोल दिया, जी प्रभु जी क्यों नहीं आएंगे आप, बोले जी प्रभु जी माता जी की शक्ल अच्छी नहीं लगती मेरे को, हस्ती बहुत है माता जी, आऊंगी नहीं मैं आपसे, अरे ऐसी मतलब उंगली तो ऐसी उठाएगा आपकी तरफ, तो इस तरह से है, तो ये व्यक्ति को लगता है, तो आश्रय आत्म साक्षात्कार का यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए कि मैंने रियलाइजेशन, तो व्यक्ति बोल रहे थे प्रभु जी मैं सुबह सुबह अपने घर से जब तैयार होता हूँ तो रोज मेरा नियम है प्रार्थना करता हूँ, फिर उसके बाद मैं जब गाड़ी से आता हूँ तो रस्ते में मैं भजन सुनता हूँ, और फिर यहाँ पर आकर आपने जो गीता दी उसको मैं पढ़ता हूँ, पर आज सुबह ऐसा हुआ हमारे पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया, तो प्रॉब्लम आ गई, पड़ोस में वो एक्सपायर हो गया और फिर मुझे वहां जाना पड़ा, 15 मिनट के लिए वहां मैं खड़ा रहा, जैसी अर्थी उठी फिर मैं भी भाई अपनी दुकानदारी के लिए निकल पड़ा वापसी में, कह रहे इसका ये तो चला गया मैं क्यों जाऊं, मैं अपने घर आ गया वापस, और मैं जब घर आया तो घर पे आके पता चला कि जिस व्यक्ति से मीटिंग थी उसने 1 घंटा मीटिंग पोस्टपोन कर दी है, और 1 घंटा पोस्टपोन करने के कारण मेरा फ्रस्ट्रेशन आ गया मेरे दिमाग, तुमने कैसे, फोन मिला है 4-5 कि भाई मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं, और मैं टाइम में लगा रहा तब तक पता चला कि जो बेसिक टाइम था वो भी निकल गया, तो मैं नहाया भी पूरा खाया भी पूरा, उन्होंने कहा मैंने खाने में तो नहीं कहा 2 रोटी की जगह आज 1 रोटी खा लेता हूँ टाइम कम बचा, आज ना बाल्टी से नहीं नहाऊंगा आज मग से नहा लेता हूँ आज टाइम कम मिला है, आज सिर्फ ठंडे ठंडे से नहा लेता हूँ गर्म कल मिक्स कर लूंगा, नहीं हम सब चीजें कर रहे हैं प्रोसीजर एवरीथिंग इज फॉलोड, बस क्या छूट गया, बोले महाराज और प्रार्थना नहीं है आज प्रभु जी मेरी सुबह से, यही छूटता है सबसे पहले व्यक्ति का, तो ये जो पकड़ के रखना है ना, प्रॉब्लम आए तो आप देखिए वैष्णवगण जितने भी हैं उनका माला के अंदर हाथ जाता है, हमारी प्रॉब्लम है माला से बाहर आ जाता है, बस यही प्रोसेस चेंज करना है। बोले हम भक्त कब बनेंगे प्रभु जी, वैष्णव कब कहलाएंगे, जब हमारा हाथ माला में जाने लगे प्रॉब्लम के आते ही, या प्रॉब्लम के आते ही माला से हाथ बाहर आ रहा है, तो ये अभी हम भक्त नहीं, अभी हम मनुष्य स्तर पे हैं जो कि चार नियमों का पालन करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और भजन करने के लिए मंदिर में आते हैं, मनुष्य है। भक्त तो है जो वैसे ही प्रॉब्लम आए वो भगवान के हाथ अंदर जाए और भगवान से प्रार्थना करे कि बस शरण में रखो अपनी, अच्छा बुरा होना क्या है वो तो आपके ऊपर है, प्रार्थना ये नहीं कि मेरा सॉल्व कर दो आप प्रॉब्लम, अच्छा बुरा जो है वो आपने ही किया होगा, बस अब तो मैं परिस्थिति में भजन कर सकता हूँ। आप देखिए जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो न्यूज टीवी में चालू रहते हैं ज्योतिष, है ना, सब लोग बैठ जाइए और अपना भजन करिए, अच्छे से मंत्रों का जाप करिए, ग्रह की नक्षत्र बचा है ऐसे करके बोलने जाते हैं, आज नक्षत्र बड़े परेशान कर रहे हैं, ग्रह पूरा पृथ्वी से टकराएगा आपके ऊपर मंगल दशा का, वो अपना पूरा बोलते रहते हैं, वो ये नहीं समझे इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम आए तो भजन करें, एक्चुअली ये वो उसमें भी गुमराह करते रहते हैं। जो मांगना कुछ है ही नहीं, अभी जप करो ना हरे कृष्णा, क्या मांगना क्या, जो करने वाला है वो तो डिसाइड किया हुआ,
जप करना
और क्या, मजे से जप करो, चैंटिंग
जप नहीं छोड़ना,
जप नहीं छोड़ना चाहिए, प्रार्थना जितनी प्रॉब्लम आए वही भक्त मिलते हैं, हमारे साथ खुद भी हो जाता है, ज्यादा रिपोर्टिंग करनी पड़ जाए जिस दिन, चार पांच मेल एक्स्ट्रा डालनी पड़ रहे हैं, तीन चार फोन ज्यादा आ गए, सौरभ प्रोजी ने दो तीन बार कर दिए दिन में फोन, तो बस अब तो माला शाम को चार माला रह गई यार, क्यों सौरभ प्रोजी से बात चल रही थी, तो ये एक्चुअली ठीक नहीं है। कर्म डिस्टाइंड नहीं है, कर्म अशाश्वत है, अगर आप भगवत गीता के इंट्रोडक्शन को पढ़ लेंगे तो उसमें वो कहते हैं एक परिस्थिति में पांच चीजें कार्य करती हैं, क्या क्या, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, तो एक कर्म को होने के लिए, एक सिचुएशन को आने के लिए पांच चीजों की जरूरत है, तो इसमें काल आप चेंज नहीं कर सकते, कैन यू ब्रिंग वन मिनट बैक, एक मिनट वापस ला सकते हैं, नहीं कि प्रभु जी हम जब आए तो लेक्चर शुरू हो गया था, प्रभु जी थोड़ा सा मुझे रिवाइंड, बस प्रभु जी यहाँ से शुरू करो, यहाँ से आप कीर्तन कर रहे थे वहां पहुंचा दो, नहीं जा सकते टाइम वापस, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लेकिन वापस नहीं जाएगा। और प्रकृति, प्रभु जी हमें शिमला मनाली ना बहुत दूर है, बद्रीनाथ केदारनाथ बहुत दूर है, इसको पास बुलाइए प्रभु जी थोड़ा सा, तो ये ना बदरपुर बॉर्डर के पास में, या फिर अपने ये जो कौन सी चुंगी लगती है यहाँ पर गुड़गांव के पास नजरगढ़ चुंगी, यहाँ बुला दीजिए प्रभु जी, नहीं कर सकते, प्रकृति हम नहीं चेंज कर सकते, सर्दियाँ बहुत हैं, गर्मियाँ हो जाए, गर्मी है सर्दियाँ, हम नहीं कर सकते। ईश्वर नहीं नहीं, कृष्णा तो बहुत दिन हो गए प्रभु जी, आज का थोड़ा नया चाहिए, गणेश जी को बना लें इस महीने, हम नहीं कर सकते एक्चुअली, वी कांट चेंज गॉड, हाँ साईं बाबा बना ले, हम भगवान साईं बाबा बना ले, थोड़े एक महीने के लिए बहुत बोर हो गए गोपाल गोपाल करते करते, तो वो भी नहीं कर सकते। ईश्वर, प्रकृति, काल और जीव, आत्मा सच्चित आनंद ही है, अब उसको बोले कि नहीं प्रभु जी ऐसे कैसे गंदे आदमी में, तो गंदी आत्मा होनी चाहिए, बड़ी गंदी आत्मा है, दुरात्मा है बोलते हैं, तो गंदी आत्मा नहीं है, उसके दुष्कर्म है, उसका शारीरिक रूप से वो तमोगुण में जुड़ा हुआ है, इसलिए वो दुरात्मा कहला रहा है, और महात्मा इसलिए कहला रहा है क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जैसे गीता कहती है महात्मनस्तु माम पार्थाम देवीं प्रकृति आश्रितम, वो व्यक्ति महात्मा है जो कि देवी प्रकृति के आश्रित है, देवी प्रकृति मतलब राधा रानी के शरण में है, जो व्यक्ति महामाया के शरण में है वो व्यक्ति दुरात्मा है, तो महात्मा कौन है, वो है महात्मा जो कि भगवान राधा रानी की सेवा में है, भगवान कृष्ण की सेवा में, वो महात्मा है, तो इस तरह से है, तो इसमें कर्म इज फ्री, फ्री विल, आजादी दी है भगवान ने, चूज करो अपना क्या करना है क्या नहीं करना है, तो प्रभु जी फिर भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो कैसे समझे, तो सिचुएशंस आर गिवन बाय गॉड, परिस्थितियां भगवान देगा, अब उस पे एक्ट कैसे करना है,
देखो डेस्टिनी क्या प्रभु जी, यही
बात, यही बता रहे हैं, एक्ट क्या करना है ये आपके हाथ में, डेस्टिनी क्या है, ये है डेस्टिनी, जैसे आज ही हम अभी जब जा रहे थे छावला के प्रोग्राम में तो डिस्कस कर रहे थे, मैंने एग्जाम्पल दिया था, ऐसे आ गया मेरे दिमाग में, तो हम दोबारा सुन सकते हैं कि पिता घर का कमाने वाला व्यक्ति होता है और उसी घर के अंदर वो दवाई भी लेके आता है उसी के पैसे से, अपने कमाए से, उसी से वो आइसक्रीम और बर्फ भी लाता है, फ्रिज भी लाता है, बच्चे का गला खराब है, अब भगवत गीता जैसे इंस्ट्रक्शन देती है ऐसे माता इंस्ट्रक्शन देती है, क्योंकि शास्त्र हमारी माता है और पिता हमारे भगवान है, तो पिता का ही अरेंजमेंट है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दवाई भी उसने दी है और बर्फ भी उसने दी है, और माँ कह रही है बेटा गला खराब है बर्फ मत खाना, इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, अब डेस्टाइंड कैसे, भाई डेस्टाइंड ऐसे है कि भाई वो खाएगा अगर दवाई तो वो ठीक हो जाएगा और अपने पिता के साथ वार्तालाप अच्छा कर पाएगा, उनके सुर में सुर मिला पाएगा, और खाएगा अगर बर्फ आइसक्रीम तो उसका गला खराब हो जाएगा, पिता से वो संपर्क नहीं जोड़ पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा, पिता बोलेंगे कैसे हो बोल ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें आप जो रास्ते भगवान ने दे दी, दोनों डिस्टेंट भगवान ने किए, आप जो चूज करेंगे आपको वैसे वैसे मिलता चला जाएगा। तो इट इज फ्री विल, यही आजादी है। बस समय मनुष्य के पास ना आजादी है, बाकी जानवर के पास आजादी नहीं है। आप रेड लाइट पर रुक सकते हैं, लेकिन कुत्ता नहीं रुकता, वो क्रॉस कर जाता है। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो इसलिए सरकार भी जानती है, कुत्ते का चालान नहीं काटती कि अरे कैसे निकल गया तू, रुक, पूछ पकड़ ली, चालान बांध दिया, इसका मालिक पैसे देगा नहीं। वो तो सिर्फ ड्राइवर को रोकेगा, गाड़ी वाले को, इसको पता है कि इसको बुद्धि दी है भगवान ने रुकने के लिए। तो मनुष्य शरीर में भगवान ने जंक्शन दिया है चूज करने के लिए, लेफ्ट और राइट। मैं सारा टाइम भजन करूं या सारा टाइम भोजन करूं, सारा टाइम गप्पे करूं या सारा टाइम मैं भगवान का शास्त्र पढ़ूं। ऑप्शन है हमारे पास में, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाऊं या ना लगाऊं। और ये दोनों चीजें डिस्टेंड है। भगवान तो कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टम स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा वेदस्य सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदावित अहम। सबके हृदय में मैं बैठा हूं और अंदर बैठ के मैं बुलवाता हूं कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं जानना नहीं चाहता। जब मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता हूं तो मैं बोलता हूं बुद्धि से, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। जब मैं ये बोलता हूं तो भगवान अंदर से आवाज लगाते हैं, हाँ मैं नहीं हूं। अगर मैं बोलता हूं नहीं भगवान है, भगवान मुझे कब दर्शन देंगे, कहते हाँ तू जानना चाहता है, मैं दूंगा, रुक, ये देख मैं आ गया रुक्मणी द्वारकाधीश के रूप में, आ गया जगन्नाथ के रूप में, कौन देता है दर्शन। और एक बच्चे से पापा आए और उसके घर में अंदर आकर बैठे, बोले बहुत थका हुआ हूं बेटा, कोई भी आए तो बना कर देना कि मैं नहीं हूं। तो एक घंटी बजी, बोले पापा घर में है, तो बच्चे ने क्या कहा, पापा कोई आया है और बोल रहा है आप घर में है, कहता नहीं जाके कह दो मैं घर में नहीं हूं। तो बोला अंकल जी पापा कह रहे हैं कि वो घर में। तो नास्तिकवादियों को यही समझते हैं, नास्तिकवादी पूछते हैं पापा है क्या, कृष्ण है क्या, गॉड इज देयर, तो अंदर से भगवान कहता है कि है ना मना कर दो नहीं हूं, कहते हैं हाँ गॉड इज सेइंग इन बाइबल गॉड इज देयर नो गॉड, स्क्रिप्चर्स आर सेइंग देयर इज नो गॉड, वेदास आर सेइंग गॉड इज अव्यक्त मूर्ति नाम, गॉड इज निराकार, भगवान निराकार है, शास्त्र कह रहे हैं आपके। ऐसे करके लोग, वो तो अंदर बैठ के बुलवा रहा है, जाओ बेटा बोलो पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है, भगवान कह रहे हैं भगवान घर में नहीं है, भगवान नहीं है,
भगवान तो कभी नहीं मिलते।
हाँ कैसे मिलेंगे, जब तक उनकी भावना ही नहीं आएगी तब तक कैसे जुड़ेंगे। थॉट तो बुद्धि तो दी है ना, इस बुद्धि से जो जानना चाह रहे हैं, आप लोग कौन थे, नास्तिक ही तो थे पहले, मायावादी तो थे, इधर से उधर घूम रहे, आप जानना चाह रहे हैं इसलिए काम होता जा रहा है। मनुष्य नाम सहस्रेशु किश्चितम यताति अपि सिद्धा नाम, जो करोड़ों करोड़ लोगों में से, हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति मुझे जो है ना समझने का प्रयास करता है, और उन हजारों में से जो समझने का प्रयास करते हैं कोई एक मुझे जान पाता है। 1000 × 1000 मीन्स 1 lakh, लाखों में से कोई एक। अभी द्वारका में तो लाख भक्त जुड़े भी नहीं है, कैसे जानेंगे भगवान को, बहुत मुश्किल है। तो यही भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान हरि, अपनी शिक्षा के अहंकार में मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा। शील भक्ति विनोद ठाकुर पश्चाताप करते हैं, मैं वृद्ध हो गया हूँ और जॉब करते करते तो मैरिज हो जाती है, अच्छी लड़की ढूंढ लेते हैं, और फिर उसके बाद में मैरिज करने के बाद में घूमना फिरना चालू हो जाता है, सपने साकार किए जाते हैं, कभी PVR पे तो कभी मॉल में, जाते करते कुछ नहीं है मैंने देखा है ना। आइसक्रीम पार्लर के पास 50 रुपए की आइसक्रीम खरीद के घर वापस आ जाते हैं, बोलते क्या है, बड़ा शॉपिंग करने गए थे, शॉपिंग क्या की कुछ खरीदा नहीं वापस आए। हमारे से उनसे अच्छे तो भक्त होते बेचारे, लोकल शॉप पे जाते हैं वहां से अपने धोती कुर्ता अपना खरीद के ले आते इतना सारा सामान। जब एक भक्त लाए शॉपिंग करके देखो पूरा पूरा कार्टन भर के लाता सामान का, और वेल फैशनेबल लोग मॉडर्न एडवांस कहते हैं अपने आप को, जाते हैं सिर्फ आइसक्रीम खा के वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से है। तो फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, फिर मन में कामना आने लगती है कि अब क्या हो, मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए तो अब फैमिली बढ़ जाए, मेरी फैमिली बढ़ जाए तो एक बच्चा हो, एक लड़का हो, एक लड़की हो, ऐसा हो वैसा हो, काश हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हा? अरे हरे कृष्णा से काम नहीं चल रहा तो चलो मैं कोई और मंत्र कर लेता हूँ, चलो मैं कोई और भजन कर लेता हूँ, क्या पता साईं बाबा की कृपा हो जाए। माता जी आजकल आप आते नहीं, दिखते नहीं। हाँ प्रभु जी थर्सडे को मैं खिचड़ी बांटने जाती हूँ साईं बाबा मंदिर में। हाँ तो ये तरह का जो है भक्ति विनोद ठाकुर मना करते हैं, कह रहे हैं फिर धीरे धीरे व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और उसके बच्चे उसको घर से निकाल देते हैं, है ना, उसके बच्चे, वही बच्चे जिन बच्चों को वो गोदी में खिलाता था ना, और वो पूछते थे, बच्चा पूछता है बेटा पापा पापा वो पेड़ पे क्या है, तो बच्चा बोलता है, तो पिताजी बोलते हैं बेटा कौआ है, फिर बच्चा बोलता है पापा पापा पेड़ पे क्या है, अरे कितना मीठा बोलता है कौआ बेटा कौआ, फिर 15 मिनट बाद पापा पापा पेड़ पे क्या है? नो बच्चो, कौआ है, कौआ। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड फोन कर रही है या उसकी वाइफ फोन कर रही है और वो बाइक स्टार्ट कर रहा है या कार स्टार्ट कर रहा है, चाबी घुमा रहा है और पापा को दिखना बंद हो गया, रिटायर हो गए हैं और घर के बाहर बैठे हैं, वही पेड़ है, वही कौआ है। वो पूछ रहे बेटा पेड़ पे क्या है? कह रहे 100 बार बता दिया, दिखाई नहीं देता तुमको, चश्मा ठीक नहीं करा सकते अपना। तब उसे लगता है क्या हो गया, व्यथा ही जीवन व्यर्थ कर दिया मैंने, जिसके चक्कर में पूरी लाइफ गुजार दी उन बच्चों को बड़ा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, इंजीनियर डॉक्टर बनाने में। आज वो बच्चे सुनते ही नहीं। इसीलिए आप देखिए मंदिर में हम तो दुखी हो जाते हैं, खैर जवान लोग आ ही नहीं रहे, सब बुजुर्ग ही आ रहे हैं, तो फिर पता चला कि घर डांट खाते तो फिर आ जाते बेचारे, क्या कर। ऐसा नहीं है सभी ऐसे हैं, कुछ श्रद्धावान भी होते हैं, लेकिन बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है मंदिर में। भगवान ने कहा अर्थ अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आ रहे हैं।
आजकल जो है शॉपिंग में ऑनलाइन शॉपिंग हो गई तो प्रेयर में कहते हैं ऑनलाइन प्रेयर करवा
दीजिए, होती है मायापुर का जो है www.mayapur.com उसमें ऑनलाइन आरती कराते हैं लोग, मैक्सिमम डोनेशन ऑनलाइन से ही है। ऑनलाइन डोनेशन हमारे लिए नरसिंह आरती कराते ना, फिर कोरियर से प्रसाद आ जाता है, बढ़िया। हाँ मायापुर में तिरुपति, मायापुर, शिरडी, सब जगह इज हैपनिंग एवरीवेयर, सब जगह
ऑनलाइन
ऑनलाइन है।
तो ये मायापुर डिस्काउंट भी होता
है। इवन अभी तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था, बोले प्रभु जी मैरिज भी ऑनलाइन करवाइए आप। मैं कहा वो तो हम करवा देंगे भी, लेकिन डिलीवरी ऑनलाइन नहीं हो पाएगी। वो कैसे करें? मतलब वो भी करेंगे सिस्टम, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है दिन पर दिन। तो इस तरह से ऑनलाइन होने लगा सब कुछ। तो ऑनलाइन का मतलब है लाइन पर आना, लाइन पर आने का मतलब है भगवान का भजन करना। आत्मा का एकमेव कर्तव्य क्या है? उस परमात्मा की शरण ग्रहण करना, उनका भजन करना। तो वो ऑनलाइन है, तो बोलते हैं ना आउटलाइन या ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ये है कि ऑनलाइन पे आ जाइए आप अपने धीरे धीरे, वरना फिर भक्ति विनोद ठाकुर जैसे कह रहे हैं इस तरह से हमें भी, वृद्ध किया एक न भक्ति विनोद, कांदिया कातर अति ना भजिया तोरे, दिन व्रथा गैला एका न की हब गति। अब जब भूल ही गया तुमको, अब बुढ़ा हो गया, अब याद आ रही है, अभी प्रभु जी बुढ़े हो गए, आइए प्रभु जी गोवर्धन परिक्रमा लगाएंगे। प्रभु जी चलाने जाता अब तो प्रभु जी हमसे, अब क्या जाएंगे गोवर्धन। तो जवानी में गोवर्धन करने के लिए बुद्धि नहीं थी, उस टाइम तो हम बिजी थे बहुत सारे कार्यों के अंदर, और अब जब आ गया है बुढ़ापा तो अब हमसे भजन नहीं होता। बुढ़ापे में सोचते हैं लोग भक्ति करेंगे, और भक्ति बुढ़ापे में होती नहीं है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, शरीर चलता नहीं है। तो जिन्होंने भजन किया वो तो बेचारे कैरी फॉरवर्ड करके बच जाते हैं, लेकिन जिन्होंने जवानी में भजन नहीं किया वो बड़े पछताते हैं बाद में, कह रहे प्रभु जी अब तो होता नहीं हमसे, अब तो इतना नहीं कर सकते, 4 बजे ठंड लगती है उठने में, अब तो नहीं कर सकते, उतना परिक्रमा पे नहीं जा सकते, यात्राओं पे नहीं जा सकते, हमसे नहीं बैठा जाता 2 घंटे एक स्थान पे बैठ के, जप नहीं कर सकते तुलसी के आगे, बहुत मुश्किल है। कुछ भक्त है हमारे जैसे चेतराम प्रभु जी, प्रवीण कृष्ण प्रभु जी, ऐसे भक्त हैं जो कि कर रहे हैं दृढ़ता पूर्वक, तो ऐसे बहुत कम भक्त हैं जो कि कर पा रहे हैं। बुजुर्ग अवस्था में होता नहीं भजन आदमी है, वो तब आता है जब करारी करारी धूप निकल जाती है ना, मूंगफली हाथ में लेके संतरे लेके तब मंदिर आते हैं, बैठ के मंदिर के गेट पे आके बैठते हैं काफी सारे। तो उनको प्रचार करते हैं हमारे चेतराम प्रभु जी, उन लोगों को बोलते हैं आप भक्ति करिए, भजन करिए। तो इस तरह से वृथा ही जीवन चला जाता है व्यक्ति का। तो इसलिए जब तक है शरीर तब तक भजन करना चाहिए भगवान का। आप देखिए अगर फूल भी देना होता है, फ्लावर, तो गर्लफ्रेंड अगर को देना हो या पत्नी को देना हो तो कौन सा फूल देते हैं? एक फूल तो भगवान देते हैं, हमला खुद को फूल बना देता है, यू आर फूल, वह पत्नी बोलती है। हाँ क्या देते हैं? एक होता है बर्ड, फिर एक होता है खिला हुआ फूल, फिर एक होता है सड़ा हुआ फूल। तो एक होता है बर्ड मतलब कली, फिर एक होता है फूल खिला हुआ फूल, फिर एक होता है सड़ा हुआ फूल। तो अगर भगवान को चढ़ाना हो तो खिला हुआ फूल देते हैं, या फिर जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हम कली देते हैं, है ना। लड़की भी बोल देती है आई नीड दैट बर्ड, रोज बर्ड। बेचारा तोड़ने जाएगा चाहे कहीं से भी जाए, कहीं वैलेंटाइन के दिन एक बार मैं देख रहा था, इतना महंगा मिलता है रोज बर्ड, वही 50-50 रुपए में बिकने वाला रोज बर्ड 500 रुपए ले रहा था उसके। व्रत व्रत
शिकायत कर रही है, आप दे देंगे
50th मैरिज एनिवर्सरी पे हम प्लान करेंगे। 25th भी तो नहीं हुआ होगा अभी, 25th हो गया आपका?
नहीं अभी होगा,
25th होगा ना, तो हो गया। अब ये चक्कर है कुछ, मुझे क्या पता, तो इस तरह से व्यक्ति का जीवन निकल रहा है। तो अगर हमें देना हो तो हम क्या देंगे भगवान को? तो वेद कहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम बर्ड देंगे, रोज बर्ड, सड़ा हुआ फूल ही देंगे। तो देखा जाए तो ये चार जो आश्रम बताए गए उसी तरह से प्लान किए गए हैं। वो प्लान करने के पीछे कारण ही यही है कि वो ब्रह्मचारी लाइफ है बर्ड की तरह, ग्रस्त लाइफ है खिले हुए फूल की तरह, 25 साल से 40 साल तक, 40 या 45 तक, और फिर 50 साल के बाद में तो फिर क्या है, सड़ा हुआ फूल है। और वे सड़ा हुआ फूल भगवान के चरणों पे अर्पित भी करे तो क्या अर्पित करे, लेकिन भगवान इतने दया दयालु है, कृष्ण से ज्यादा चैतन्य महाप्रभु, वो कहते हैं चाहे कुछ भी हुआ अंत भला सो सब भला, आया तो कम से कम
ऑनलाइन
आया, फूल तो आया ऑनलाइन आ गया। आप तो दूसरों के लिए प्रार्थना करना, तो नारद मुनि अपने नहीं करते। लास्ट आश्रम में बताया था आपको कि नारद मुनि कह रहे मैं ले आऊंगा भगवान सब भक्तों को, और जब ऊपर पहुंचे तो पता चला आधे सारे ड्रॉप आउट हो गए अलग अलग लोगों में अपनी इच्छा के अनुसार। तो इस तरह से, तो अभी हम भगवद गीता के 16 चैप्टर का 7th श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सब आए भोजन के लिए, एक्चुअली भजन के लिए तो कम लोग आए। ओ सुल्तान इधर दोनों ध्यान दो। सिक्सटीन चैप्टर 7 श्लोक का ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। तो आरषि माता जी आपके लिए पढ़ा जा रहा है, ये सभी श्लोक को ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन सच में बंद करो उसको,
मुझे अपना बलिदान
ये कुछ ज्यादा ही ऑनलाइन
भगवत गीता खोल दो
जैसे उसकी गुलाब के लिए तो बजा देते हैं इसमें बजता है
मेरे पास तो है इनको लेना है। आगे सब 16.7 पे तो 16.7 पढ़ रहे हैं, साथ में दोहराइए आप लोग। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुरासुरा न शौचं न अपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। और थोड़ा सा इसको सुरीले ढंग से पढ़ते हैं, वैसे विवाह उत्सव में तो सुरीले ढंग से होना चाहिए हर चीज। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदु आसुरा न शौचं न पीचाचरो न सत्यं तेषु विद्यते। एक बार और पढ़ते हैं। प्रवतिम च निवृतिम च जनाना विदुम आसुरा न शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विदते। इसका अर्थ पढ़ेंगे, जो आसुरी हैं वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तात्पर्य बस दिवाइन गुरु श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक समय मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं, तो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर समय आचार संहिता लग जाती है। कहते हैं जब इलेक्शंस होते हैं तो सारा असला जो होता है वो पुलिस स्टेशन में जमा कराना पड़ता है। तो आचार संहिता कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। विशेषताएं, आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं इनका पालन करते हैं। तो आर्य और जो सभ्य हैं वो पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है, असुरगण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं ना उनमें इनका पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ना ही तो असुरगण उसको मानते हैं और ना ही प्रवृत्ति है कि आगे मानने की कोई आशंका भी नहीं दिखती, दूर दूर तक नहीं दिखता कि भक्त बनेगा। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और जो थोड़ा थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। अभी कुछ जानते भी हैं कि भैया 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करने, यही पूछते थे 16 माला कब होगी, 16 माला कैसे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं लेकिन प्रवृत्ति खराब होने के कारण हम उसको कर नहीं पाते हैं। उन्होंने ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है ना ही उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। तो वैदिक आदेश जो है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए और फिर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। असुरगण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। तो असुरगण अंदर से भी खराब होते हैं और बाहर से भी खराब होते हैं। तो ऐसा नहीं था असुरगण जो होते हैं उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती है, सींग होते हैं, वही असुर होते हैं। टीवी में तो यही बताया गया चाहिए। दो शास्त्र थे ना, एक तो बी आर चोपड़ा की महाभारत और एक रामानंद सागर की रामायण। उन्होंने लोगों को, इन दो शास्त्रों ने गुमराह कर दिया कि असुर का मतलब सींग वाला। जो सींग नहीं है वो तो सोचता है मैं असुर नहीं हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। जिसकी बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी नहीं है या दांत नहीं, काले काले खून निकल रहा है, काला शरीर, वही राक्षस है। लेकिन ऐसा नहीं है। राक्षस कौन है? जिसका अंदर प्रवृत्ति खराब है, असुर गण वो व्यक्ति है। तो वो सुंदर होते थे, हिरण्यकश्यपु की हरि बोल। हिरण्यकश्यपु की जो सुंदरता थी, इतनी सुंदरता थी जैसे लगता था कोई देवता उतर आया है। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, बहुत सुंदर था। रावण भी बहुत सुंदर था, जैसे बना देते हैं बड़ी बड़ी मूछें, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत सुंदर दिखते थे असुर। और सिर्फ उनकी प्रवृत्ति खराब होती थी। तो आज भी ऐसे नहीं कि असुर नहीं पाए जा रहे। तो असुर और सुर, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। तो सुर कैसे पता चलेगा कौन है और असुर कैसे पता चलेगा? जो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चला रहा है वो सुर, वो देवता। जो नहीं चला रहा, चाहे श्रद्धा कितनी भी हो, बोलते हैं लोग अच्छी श्रद्धा हो तो कर नहीं पाते, नहीं कर पाते तो आप असुर कहलाते हैं, आप कर नहीं पाते तो दिक्कत आपकी, हमारी नहीं है। जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। अनुसरण ब्रह्म तथा आंतरिक स्वच्छता के नियमों को न चाहते हैं ना इनका पालन ही करते हैं। तो असुरगण जो होते हैं वो तो ना ही अंदर की स्वच्छता चाहते हैं हरे कृष्ण मंत्र जप के, और ना ही बाहर की स्वच्छता चाहते हैं। देखने में फटी हुई जीन्स, जीन्स क्यों आई? हमारे प्रभु जी बता रहे थे उस दिन मेरे को, तो जीन्स इसलिए आई क्योंकि लोग धोने के आलसी थे, कपड़े धोना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो जीन्स डेनिम हमारे समाज में आ गई। तो फिर वो अंग्रेजों ने उस चीज को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वो नहाना नहीं चाहते। तो लेजीनेस क्या है? तमोगुण का ही तो एक लेबर क्लास ऑफ पीपल जो काम करते थे और उनको धोने के लिए टेंशन नहीं होता, आराम से पहन सकते हैं, तो वो उन लोगों के लिए डेनिम आया। अभी तो जो डेनिम पहनता है वो बड़ा ग्रेट माना जाता है। अगर देखा जाए तो लेबर से भी मतलब शुद्र व्यक्ति हो गया ना, नीचे व्यक्ति का व्यक्ति हो गया, हरिजन हो गया वो व्यक्ति, तो कैसा नीचे का, क्योंकि वो जीन्स पहनकर सोच रहा है मेरे अंदर के जीन्स बदल जाएंगे। उन्हें पता नहीं है धोती कुर्ता पहनने से उसके जीन्स बदलेंगे, धोती पैंट से नहीं बदलेंगे। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। तो ये मनु संहिता क्या है? संहिता वो होती है जो शास्त्र कोई देवता या उच्च श्रेष्ठ का व्यक्ति लिखता है, जैसे ब्रह्मा जी ने लिखा ब्रह्म संहिता, तो ऐसी तरह से जब मनु जो मानव जाति के प्रथम जीव है, मनु वो जो लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं मानव जाति के लिए, तो मनु संहिता बन जाती है। जो मानव जाति का अधिनियम है, यहां तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता के अनुगमन करते हैं, जैसे ये विवाह, तो ये मनु संहिता के अंदर वर्णन किया गया है किस प्रकार से विवाह होना चाहिए, कौन से मंत्रास पढ़े जाने चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। इस ग्रंथ से उत्तर अधिकारी तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। तो विधि क्या पालन करें, शादी कैसे हो, कैसे विवाह हो, कैसे विदाई हो, कैसे सगाई हो, सारा का सारा उसके अंदर लिखा गया है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि स्त्रियों की दासी बनाकर रखा जाए। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। अब ये मनु संहिता में लिखा, अभी लोग लड़ने लग जाते हैं हमारे से जब कभी लेक्चर देते हैं ना। इवन मेरी मैरिज में भी हो गया था, मैं मैरिज में गया तो वो कोई इतने बोल दिया हमारे साथ, जो एक व्यक्ति था बोले कुछ सुनाइए, मैं सुना नहीं था। तो लेक्चर तो दे सकता हूँ, वो कृष्ण का नहीं तो करते। तो जो जो इवन एकादशी भी थी उसमें, तो मैरिज में एकादशी थी, तो कुछ खाना भी नहीं था, तो इसलिए भोग प्रसाद का को मैंने बोला फास्ट है, फ्रूट ही लेना था उस दिन। तो और कंठी माला को छुपा रही थी मेरी मदर, मतलब फादर बोल रहे थे इसको छुपा लो, ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। मैं कहा ठीक है कर लिया। लोग क्या सोचेंगे साधु की शादी हो रही है। तो वहां पे मैंने एक दिन बोल दिया, मतलब जो वाइफ की जो वो होती है बहने, तो सारी उनको बोल दिया मैंने, सिर्फ इतना ही बोला था कि है ना, स्त्रियां मनु संहिता कहती है कि स्त्रियों को हमेशा पुरुष की सेवा में लगा रहना चाहिए। सही प्रश्न का इस्तेमाल, सही उन शब्दों का इस्तेमाल चयन किया था मैंने। फिर भी वो नाराज हो गए, बोले आप लोग हैं ही ऐसे, अभी तो शादी हुई भी नहीं है, पहले दासी बनाने की बात है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ये। फिर वो वैसे करके बहुत देर तक बोलने लगे। तो फिर मैंने उनसे प्रश्न पूछा, मैंने कहा आप जॉब करती है, कह रही हाँ, तो किस में चलती है, कह रही लेडीज स्पेशल। मैंने कहा जब आप बराबरी का दम भरते हो तो स्पेशल क्या होता है, पुरुष स्पेशल अगर चल जाए जेंट स्पेशल तो आप कहेंगे स्पेशल बनाते हैं अपने आप को, लेकिन लेडीज स्पेशल जो है वो आप करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेट्रो में चलते हैं बड़े ठाट बाट से, माता जी सेम सैलरी कमाती हैं, सेम ऑफिस में काम करती है, सेम डिग्री है, ऐसी क्या चीज की कमी है उनके पास में जो आके खड़ी हो जाती है और छाती ठोक कर बोलती है उठो मेरी सीट से, लिखा है लेडीज सीट। तत्र देवता, हाँ सम्मान करना है उसको, मालिक नहीं बनाना, सम्मान करना है। सम्मान मीन्स गिव रिस्पेक्ट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको क्या है मालिक बना दें। इतना सम्मान दे दे, इतना सम्मान दे दे, खुद की रोज बेइज्जती होती है। तो वो वाला सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। सम्मान दे इतना कि हाँ श्रेष्ठता से हमारा जीवन चले। तो मनु संहिता में बताया गया, तो लेडीज आकर बोलती हैं कि हमें सीट चाहिए, तो बराबरी का अगर हक बोलती हैं कि वी आर इक्वल, तो दे शुड नॉट आस्क फॉर दैट। लेकिन अगर वो मनु संहिता के अनुसार चले, कहाँ चल रही है वृंदावन, बैठते नहीं है कोई भी, कहाँ जा रहे हैं प्रभु जी, वृंदावन बैठो, अरे तो 5 मिनट बाद चले जाना। कभी ऐसे कोई बोलता है मैं माला करने जा रहा हूँ, प्रभु जी रुखा नहीं जा रहा मेरे से, रुखा नहीं जा रहा, इतना प्रेम भर गया माला का, एक माला करके आता हूँ प्रभु जी बस। ऐसे ही उमड़ना चाहिए माला की इच्छा तो है ना। तो यहाँ पर हरी बोल सुनिए, मैं बोलू कहाँ, अच्छा मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए, स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए स्त्रियों के पास में। तो अभी मैरिज होने के बाद में डिमांड नहीं करना चाहिए। आरिषी माता जी सुनिए, आपके लिए बोला जा रहा है, ये सब तो जानते हो ऑलरेडी मैरिड है, कि कुछ ना भी सुन लो कुछ होने वाला नहीं। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान है। कैसे रहे? बच्चों के जैसे। तो बच्चे को ना तो मारते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम से रखते हैं, लेकिन ये मानना चाहिए कि तेरी गलती नहीं बेटा, तेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इस तरह से सोचना चाहिए। तो बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? प्यार से। उनकी हर जरूरत पूरी की जाती है। कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति के लिए सेवा करना चाहते थे, तो उन्होंने जो जो चाहिए था, इवन मानसिक उन्होंने एक महल बनाकर दिया, आभूषण ला के दिए, अनेकों दासियां ला के दी। लेकिन इसका मतलब कहीं पर भी नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि तुम मालकिन बन जाओ, आगे से तुम बोलोगी मैं सुनूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं एहसान को घर के अंदर शेर होना चाहिए, पति को घर के अंदर शेर होना चाहिए, फिर पत्नी को शेरा वाली बेचारा पता चल गया। तो इस तरह से शेरा वाली नहीं बनना है उसको, ना शेर बनना है, दोनों को भक्त बनना है भगवान कृष्ण का, ना वो शेर बने ना वो शेरा वाली बने। इसका आगे बताते हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं उन्हें दास बनाकर रखा जाता है। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की अपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ये कौन बोल रहे हैं? असुरों ने ऐसे आदेशों को अपेक्षा कर दी है। तो जो बात ऐसी करे, इक्वालिटी की बात करे, वो व्यक्ति क्या है? प्रभुपाद कहते हैं वो असुर है। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल काल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए। जब वो छोटी हो, जब उसका विवाह ना हुआ हो, तो उसकी हर एक इच्छा को उसके पिता पूरी करते हैं। तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। जब वो यंग हो, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्र द्वारा। तो आपका बुढ़ापा आ चुका है इसलिए बड़े पुत्र को छोड़ दिया।
सही आंसर दिया।
मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है, लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अंतर्जित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। आधुनिक शिक्षा ने, तो जब लॉर्ड मैकॉले इंडिया आए तो पूछा कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो पता चला कि इनका जो शिक्षा प्रणाली है वो इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ पर संस्कार सिखाए जाते हैं। पुरुष नारी का सम्मान भी करता है, पर वो मालकिन नहीं होती, मालिक तो पुरुष होता है। पुरुष गुरु का सम्मान करता है और गुरु के शरणागत होता है, और गुरु और जो है वो कृष्ण के शरणागत होते हैं। ये इनकी शिक्षा प्रणाली है, इसको तोड़ दो, द बैकबोन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इनको तोड़ दो, कमर रीढ़ की हड्डी टूट जाना, फिर आदमी कभी खड़ा नहीं हो सकता। तो रीढ़ की हड्डी क्या थी? हमारे संस्कार, हमारे शास्त्र, हमारे आचार्यगण, हमारी परंपराएं, हमारा ज्ञान, कल्चर, वो सब बिगाड़ दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया? इंग्लिश, इक्वालिटी, और सब कुछ चुना कहां से? इसी भाषा से सुना। ब्रादर शब्द बोलते ना, ब्रादर, कैसे हो ब्रादर, उसी से ब्रदर बन गया। तो इस तरह से कई सारी चीजें जो है वो इन्हीं सब से ली गई हैं। और नियर जो होता है ना, नियर, ये भी इंग्लिश का शब्द नहीं, हिंदी का शब्द है। कहते ना निंदक नियरे राखिए, तो नियर क्या है? निंदक को पास। नियर मीन्स इंग्लिश, कम नियर मीन्स, नियर मीन्स इंग्लिश। अरे इंग्लिश नहीं है बाबा, ये हिंदी है, शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो उसमें निंदक नियर मीन्स पास। तो देखिए आप, सारा ज्ञान तो हिंदी से उठाया और इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दी, और क्या बोल दिया? इक्वालिटी, nobody will surrender to anybody, we all are equal, हम सब बराबर है, पुरुष और स्त्री कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और फिर वो धक्का मार के आगे निकल जाती है, वो अलग बात है। लेकिन बताया कि शरणागत होना चाहिए। अतएव इसके आगे बताते हैं, आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अंतर्जीत अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया, और अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। विवाह क्या हो गया है? प्रभुपाद लिख रहे हैं कल्पना है। यू आर मैरिंग हिम, यू आर मैरिंग, आप शादी कर रहे हो, पागल हो गए हो आप, इस तरह से लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और वे तो आजकल तो मॉडर्न सोसाइटी में, मैं तो हमारे जो छोटे ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके साथ कभी कॉलेज के बच्चे होते हैं, वहां मैं बैठ जाता हूँ और वो क्वेश्चन आंसर पूछ रहे होते हैं, तो उसमें वो जब बोलते हैं इस तरह से कि अरे मैरिज नो वे, अरे नो वे, ओनली दिस इज द वे, एक लड़की के लिए यही रास्ता है। वो बचपन में अपने पिता के शरणागत और बड़े होने पर अपने पति के शरणागत और बूढ़े होने पर अपने पुत्र के शरणागत। आप देखिए माता देवहूति ने किससे ज्ञान प्राप्त किया?
कपिल मुनि,
कपिल भगवान अपने पुत्र से, उनके बेटे हैं कर्दम मुनि के 10वें पुत्र, 9 पुत्रियों के बाद में पुत्र हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। विज्ञान तो तब होगा ना जब दिया होगा पहले कुछ, तभी वो उनके शरणागत हो सकता है। वरना जैसे ही पति जाएगा, पुत्र को अगर संस्कार नहीं होंगे तो पुत्र कहेगा मामा पापा टाइम ओवर, नाउ नॉनवेज टाइम रेडी, अब हम लोग नॉनवेज खाएंगे, लहसुन प्याज खाएंगे, अब हम लोग अनियन गार्लिक खाएंगे, अब हमारे घर क्या आएगा, पिज्जा एंड पास्ता एंड स्टॉप योर गोलोक रास्ता, तो वो पिज्जा पास्ता आएगा, अब आप गोलोक रास्ता जाना भूल जाइए। तो स्त्री के लिए बताया गया, अहंकार के कारण बोलती है शादी कैसे कर लूं, कैसे शादी कर लूं, कैसे एक व्यक्ति के साथ बंधन में रहूं, जब इतने लोग मेरे पीछे घूमने वाले हैं, एक के साथ कैसे रहूं। तो गलती है, अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कराने के कारण, ये शिक्षा के कारण ऐसा हो रहा है। अतः अब विवाह एक कल्पना बन चुका है, तो विवाह कल्पना नहीं है, विवाह मनु संहिता के अनुसार एक नियमित कर्म है, एक स्त्री को जाने चाहिए। और पुरुष अगर वो ब्रह्मचारी जीवन नहीं गुजार रहा अपना, तो वो ये नहीं कह सकता कि क्या करते हैं आप, बोले जी मैं घर पे रहता हूं, अच्छा तो आप शादीशुदा है, नहीं जी मैं ब्रह्मचारी हूं, तो आप मिथ्याचारी हैं। एक्चुअली ब्रह्मचारी भगवान की सेवा करता है, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करता है, ऑरेंज कपड़े पहन के भगवान की सेवा करता है। घर पर रहकर मैं जी फेक अव्यक्त में ब्रह्मचारी, शादी भी नहीं करूंगा और वो भी सब करूंगा जो गृहस्थ जीवन के लोग करते हैं, तो वो मिथ्याचारी बन जाएगा, ब्रह्मचारी नहीं बनेगा, मनु संहिता कहती है। और ब्रह्मचारी के बाद में व्यक्ति को वानप्रस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और ब्रह्मचारी के बाद तो डायरेक्ट संन्यास व्यक्ति के हाथ में रहता है। तो इस तरह से नियम बनाए गए। स्त्री को नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है, अतः असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, तो जो समाज के लिए अच्छा हो वो भी नहीं ग्रहण करते। लड़कियों को बोला जाए तिलक लगाओ, हरे कृष्ण जपो, इस्कॉन गर्ल फोरम ज्वाइन करो, अरे ये सब कोई टाइम है अभी करने का, अरे ये तो चीपो ओल्ड टाइम के लोग करते हैं, इट्स नाउ यंग जनरेशन, स्पीक इंग्लिश मैन, स्पीक इंग्लिश, अरे देन व्हाट, स्पीक इंग्लिश क्या होगा, बाद में पिता पति की पिटाई करोगी तुम और कुछ नहीं होगा। असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा, और वो ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम कहां पर थी, प्रॉब्लम बच्ची के साथ नहीं थी, प्रॉब्लम उसके माता पिता के साथ थी, उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया इसलिए उनकी बेटी को भी नहीं आता, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभव तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते उनके पिता माता। अतः आश्रित लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है, शोचनीय है, इतना सोचना पड़ेगा कि ये भी व्यक्ति आज के संसार में ऐसे लोग भी हैं, लिविंग रिलेशनशिप ये तो था ही नहीं पहले, अभी तो पता नहीं शादी किसी किसी की हो रही है, कितने साल रहे, 8 साल रहे, 9 साल रहे, 10 साल रहे साथ में, और उसके बाद बोल दिया कि ही इज नॉट मैंट फॉर मी एक्चुअली, व्हाट इज दिस, गलत है ये। तो ये सब करना व्यक्ति को क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको संस्कार नहीं मिले शुरू से। तो ये असुरी प्रवृत्ति हमारी शिक्षा प्रणाली है, तो इस शिक्षा को बदलने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, कि हम शास्त्रों की शरण ग्रहण करें। शास्त्र मतलब गीता श्रीमद् भागवतम। पहले जमाने में लड़की की जब विवाह होता था और उसे भेजा जाता था, तो उसके माता पिता लड्डू गोपाल साथ में देते थे, क्यों देते थे, बोले कि इसका कोई ना हो लेकिन कम से कम भगवान तो इसके हो, मान लो पति भी अगर दुराचारी निकल गया, पर स्त्री संघ के अंदर घूमने लगा, तो कल को इसके साथ में कौन रहेगा, तो इसका कौन रहेगा, गोपाल रहेंगे, इसके भगवान रहेंगे। तो ऐसे ही सही माता पिता वो है जो अपनी अपनी पुत्री की विदाई में उसको दें, तो क्या दें उसको, जो देना है ठीक है भाई, वॉशिंग मशीन देना है, टेलीविजन देना है, बट बेटी हमारी अकेले कमरे में सारा दिन क्या करेगी, टीवी तो देखेगी, तो टीवी कहाँ से लाएंगे हम, तो उसके लिए आपको हम एक होम थिएटर दे रहे हैं बेटी, अंदर रॉक म्यूजिक लगा के सास कुछ कहे तो जोर से बजाइयो, सास के कान फोड़ दियो रॉक म्यूजिक बजा के। तो इस तरह से हम नहीं पिचिंग करना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए कि आप जाइए और उस घर को भी क्या बना दीजिए, भवन बना दीजिए, जैसे आपने इस घर को भवन बनाया, जैसे बेटा मैंने अपने घर को भवन बनाया, आप भी इसे भवन बनाइए। और भवन में भ का मतलब है भगवान का वास स्थान, जिस घर में भगवान रहते हैं वो क्या बनता है, भवन, और भगवान निकल गए तो क्या बना, वन, और वन में कौन रहते हैं, तो ये शास्त्र कह रहे हैं। फिर जानवर क्या करेंगे आपस में, बोले आपके घर से आजकल आवाजें बड़ी आ रही है। बोले क्या करे जी, भगवान नहीं है तो फिर वन बन गया, वन में तो जंगली जानवर लड़ेंगे लड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम है। एवरीबडी इज सेइंग, हर एक घर में पूछिए ना, यंग कपल्स स्ट्रेस है, मम्मी पापा स्ट्रेस देते हैं, मम्मी पापा स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस इसीलिए है कि मम्मी पापा ने संस्कार नहीं दिए और अब बच्चों को वो स्ट्रेस लग रहे हैं। तो बेटी को अगर देना है ना तो क्या देना चाहिए, एक जब झोली देनी चाहिए कि बेटा इसको माला करो। क्या देना चाहिए, भगवान देने चाहिए, भगवान का साथ रखो। और क्या देना चाहिए, गीता देनी चाहिए। इन शास्त्रों के अनुसार अपने सास ससुर को भी माँ बाप मानकर सेवा करो, सेवा करो, सेवा सेवा एटीट्यूड। ये नहीं बोलना चाहिए कि बस आप तो इक्वल, तू और तेरा पति खुश रहे, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, सास ससुर तो बहुत दूर की बात है। तो नहीं, गलत है। प्रीचिंग यही है, टीचिंग यही है इस श्लोक की, कि असुर गण ऐसे कार्य करते हैं। जो सुर हैं, जो भगवान के शरण में, वो सब देवता हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सब चाहते थे अमृत पान करना सारे देवता, क्योंकि किसने इंद्र लोक पर चढ़ाई कर दी थी, राजा बलि ने। राजा बलि जो थे उन्होंने इंद्र लोक पर चढ़ाई कर दी और सारा राज्य लूट लिया और इंद्र को धक्के मार के निकाल दिया। तो देवता में और राक्षस में क्या डिफरेंस है, जो असुर है वो सोचता आई एम द कंट्रोलर, आई कैन मैनेज माई थिंग्स बाय मायसेल्फ। भगवान भगवान क्या है यार, ठीक है स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट बट करना तो हमें पड़ेगा ना, ऑफकोर्स वी हैव टू डू। ये गलत थॉट है एक्चुअली, ही इज द डूअर। माँ के गर्भ में बच्चे के पैदा होने से पहले ही दूध आ जाता है और बच्चे के पैदा होते ही प्रथम दिन से दूध पीने लगता है। किसने दूध की नाली लगाई, मदर डेयरी ने या फिर अमूल क्रीम वालों ने? हाँ, और बच्चे के बड़े होते ही दूध समाप्त भी हो जाता है माता के स्तन में। कौन लगाता है पाइपलाइन, ना पति डालता है, ना सास डालती है, ना ससुर डालता है, ना देवर डालता है, ना जेठ डालता है, कौन डालता है, भगवान। तो उस भगवान को याद रखते हुए अगर हम अपना जीवन चलाए ना, इट्स सो फैंटास्टिक, सो हैप्पी, सो पीसफुल, यू विल बी रिलिशिंग योर लाइफ एक्चुअली। तो राक्षस जो होते हैं वो सोचते हैं हम करता है, हम कर लेंगे मैनेज। लेकिन जो भक्त होते हैं वो किसके शरण में जाते हैं, तुरंत भगवान के शरण में जाते हैं। और बलि के जैसे राक्षसों ने चढ़ाई करी तो इंद्रदेव कहां चले गए, भगवान के शरण में, और बोले भगवान अब आप क्या करिए, हमको बचाइए, पाही माम रक्षा माम, भगवान हमारी क्या करिए, रक्षा करिए। बस देवता का कर्तव्य यही है, हमने यही बताया। भक्तों का प्रॉब्लम ये है, भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब भगवान प्रॉब्लम आती है तो माला में हाथ जाता है, और असुर क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो माला से हार बाहर आता है। तो हाथ अगर अंदर जाए तो हम देवता, अगर बाहर आए तो हम असुर। तो फिर वो गए थे भगवान के पास, तो भगवान ने कहा ठीक है अगर तुम चाहते हो तो तुम अमृत पियो ताकि तुम्हें बलि जैसे राक्षस मार ना सके। अभी अमृत पान करने के लिए अमृत होना चाहिए, तो सामग्री भगवान ने दे दी। भगवान ने कहा सुमेरु पर्वत की मथनी बनाओ, सुमेरु पर्वत की, और वासुकी नाग की रस्सी बनाओ। तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक साइड पर राक्षस रहेंगे, एक साइड पर देवता रहेंगे, क्योंकि दोनों को अमृत पीना है। अभी राक्षस बोले कि तुम कौन से साइड लोगे, तो राक्षस जो होते हैं ना पहले दूसरे को चेक करते हैं, वो उनको भगवान से मतलब नहीं होता। तो बोले हम साइड लेंगे मोह वाली, देवता बोले भगवान से पूछ करके कंसल्ट करके। तो जब राक्षसों को पता चला ये मोह वाली साइड ले रहे हैं, तो बोले इसमें जरूर कोई चीटिंग है, विष्णु हमेशा क्या करते हैं देवताओं की सहायता करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम ले लो पूछ और तुम ले लो मुंह। तो उन्होंने कहा ठीक है मुंह हम लेंगे। तो सारे राक्षसों ने मुंह ले, उससे पहले सभी राक्षस सुंदर दिखते थे, लेकिन जब वासुकी नाग की रस्सी से मंथन शुरू हुआ तो जो सांप था वासुकी वो फुंसकारे मारने लगा। जब उसका जहर निकल रहा था तो सारे राक्षस कैसे हो गए, डार्क ब्लैक कलर के हो गए, और असुर पूंछ की साइड में लगे रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मथनी जो बनाई थी वो क्या जा रही थी, बार बार समुद्र के अंदर चले जा रही थी, बार बार जिधर खड़ी करते थे बेस में वो बेस ही नीचे चला जाता था। अब मथनी गिर जाती, राक्षस इधर गिरते, असुरगण इधर गिरते, त्राहिमाम पाहिमाम हो रहा बार बार समुद्र में खेल, फिर पाप को इधर उधर करें, फिर इधर चले जाए, फिर इधर चले जाए। भगवान बोले तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला है। ये बता रही है चीज कि मतलब राक्षस, पावरफुल राक्षस, जो त्रिलोकी का स्वामी बोलते हैं, रावण जैसे, बलि जैसे, जो इंद्रलोक पर चढ़ाई करते स्वर्ग चले जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान ने कहा ठीक है ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो भगवान ने एक अवतार लिया, कच्छप अवतार, कुर्मा अवतार, कुर्मा कच्छप दोनों बोलते हैं। हाँ, तो फिर जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं अपने शास्त्र में, दश अवतार स्रोत में क्या कहते हैं, केशव धृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान का नाम है जगत ईश, जो जगत के ईश्वर है। तो भगवान केशव धृता कुर्म शरीरा, वो जगदीश है, जगत के ईश्वर। अभी कोई ये नहीं कह सकता बेटा ठीक है तुम्हारे घर के ईश्वर वो थे, अब हमारे घर आ गए हो, हमारे घर के ईश्वर है साईं बाबा। जगत ईश केशव है, केशव केशव मतलब जिन्होंने केशी राक्षस का वध किया, केशव जिनके लंबे लंबे केश हैं, घुंघराले केश हैं, ऐसे भगवान केशव धृता कुर्म शरीर, एक एक किसका कछुए का शरीर रखते हैं और फिर अपनी पीठ पर मथनी को धारण करते हैं और फिर कहते हैं अब करो मंथन, और फिर मंथन होने पर कई चीजें निकलती हैं, उग्रश्रवा घोड़ा निकलता है उसे कोई ले लेता है, उसके बाद ऐरावत हाथी निकलता है उसे कोई ले लेता है, और ऐसे ऐसे चलकर दोनों में 50-50 पार्टनरशिप चल रही थी, कोई ये कोई ये कोई ये, और अंत में क्या निकला अमृत। तो और फिर उसे राक्षस लेकर भाग गए, जब राक्षस लेकर भाग गए तो उस अमृत को लेने के लिए भगवान ने कहा कि अरे तुम तो अमृत पान, तुम्हारे तो मतलब वो है कि मतलब हरि नाम दे दिया, ये धाम का रास्ता है, शास दे दिया, अब तो कर ले, ये भी नहीं हो रहा हमसे, तो ऐसे देवता ढीले डाले एकदम लेजी। तो देवता एकदम अमृत निकल आया, मंथन भगवान ने कर दिया। इवन एक आचार्य बताते हैं वासु की नाग की रस्सी जो थी उसमें भी भगवान थे, अगर भगवान वासु की नाग में नहीं होते ना तो नाग के तो चितड़े चितड़े उड़ जाते, भगवान उसमें भी प्रवेश कर गए थे। तो आप सोचिए मथनी में भगवान की, पर्वत में भगवान कहते हैं सुमेरु हूं, भगवान पर्वत भी भगवान, कच्छप भी भगवान और भगवान और रस्सी भी भगवान, और फिर अमृत निकले तो उसे बचाने भी भगवान। ये चीज बता रही है कि भगवान के बिना तो कुछ पत्ता भी नहीं है सत्ता सृष्टि के अंदर। फिर जब वो देवता भागे और राक्षस भाग गए लेके अमृत का घड़ा कुंभ, तो अभी सारे रोने लग गए, भगवान इतनी मुश्किल तो मेहनत करी हा? और हमें मिला भी कुछ नहीं, मंगल आरती मिस हो रही चार दिन से हमारी, और ये लेके भाग गए हमारा घड़ा, अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा भगवान ने कहा ठीक है डोंट वरी मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। तो भगवान ने कौन सा अवतार रखा, मोहिनी अवतार, एकदम सुंदर स्त्री बन गए। ऐसी स्त्री मतलब भगवान कोई भी रूप रखते है ना तो इतने सुंदर बन जाते, इतने सुंदर, ये भक्तों का गुण भी होता है, भगवान के जैसे गुण भक्तों में भी होता है, भक्त भी जो काम करते हैं वो बड़े सुंदर लगते हैं। आप प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में विदेश जा रहे हैं, इतने सुंदर लगते हैं कोई मतलब 35 साल का बालक मतलब यंग नहीं लगेगा देखने के लिए, प्रभुपाद जी इतने सुंदर आकर्षण उनकी आंखों के अंदर है। वो इसीलिए कि भक्त और भगवान जो करते हैं वो डिफरेंट होता है, समथिंग डिफरेंट। भगवान कछुआ बनते हैं तो ऐसा कछुआ तो कोई बना ही नहीं आता, मछली बनते हैं तो ऐसी मछली तो कोई बना ही नहीं है, भगवान अगर वराह रूप रखते हैं सुअर के रूप में आते हैं तो भी ऐसा कोई नहीं है। हम तो बोलते हैं तो गंदी चीजें रहता है खाता है गंदी जगह रहता है, भगवान जो करते हैं डिफरेंट। तो भगवान जब इतने सुंदर रूप रखा मोहिनी तो सब हैरान हो गए देख के, और सबसे ज्यादा हैरान हुए कौन, शिव जी। अरे शिव जी हैरान ऐसे हो गया, उनकी हार्ट बीट होता है ना, कभी सुंदर स्त्री देख ले कोई अच्छी बात सुन ले तो गाल लाल रहते हैं, आदमी बोलता है बड़ा ब्लश कर रहे हो क्या चल रहा है, और शिव जी के गाल लाल हो गए, आंखें लाल हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई, और यहाँ तक कहते हैं उनका वीर स्खलन हुआ। क्यों हुआ, क्यों, उसी से कार्तिकेय का जन्म होता है, तो इसी के कारण हुआ कि शिव जी मोहिनी रूप देखकर अपने जो बोले जाते हैं मतलब तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी, धीर अगर कोई व्यक्ति हो तो धीरा धीर तो वो शिव जी जैसा होना चाहिए, वो भी मोहिनी रूप देखकर भगवान घबरा गए। अब ऐसा सुंदर रूप जैसे शिव जी जैसे भक्त भगवान के देखकर घबरा जाए तो असुर क्या करेंगे, असुर के हाथ से तो ऐसे मटका दे भी रहे हैं और सोच भी रहे कौन ले रहा है और देते भी जा रहे हैं, और भगवान मोहिनी के रूप में लेते जा रहे हैं और क्षण क्षण अपनी पायल की आवाज कर रहे हैं और लेकर भगवान चले जाते हैं, और फिर कहते हैं क्रम में आप लोग बैठ जाइए लाइन में और मैं पिलाऊंगा, और फिर देवताओं से शुरू करते हैं। तो फिर राक्षस बोलते हैं ये तो खत्म कर देंगे देवताओं को पिलाकर, और हमारे टाइम में कह देंगे नो बैलेंस, जैसे रिचार्ज खत्म हो जाता है फोन का, बैलेंस खत्म हो गया। तो राहु और केतु जो थे उन्होंने क्या सोचा कि हम लाइन में आके बैठ जाते हैं देवता का रूप रखकर, वो आकर बैठ गए, और फिर जैसे ही उनके मुख में वो गया क्या अमृत, वैसे ही इंद्रदेव ने चिल्लाकर क्या कहा, अरे त्राहिमाम विष्णु भगवान नारायण ये कौन है, राहु और केतु राक्षस पी गए अमृत। भगवान ने कहा अच्छा, तुरंत अपना मोहिनी रूप छोड़कर भगवान ने चक्रधारी रूप धारण कर लिया और चक्र से दोनों की गर्दन काट दी। दोनों की गर्दन काटते ही राहु केतु का गर्दन तो अमृत पा चुकी थी, तो वो आज भी कहते हैं ग्रहण लगाती है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, और कहते हैं राहु केतु की दशा लोगों को लग जाती है, लेकिन राहु केतु की दशा से घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्या बोलिए आप मेरे पीछे पीछे, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है।
हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है।
अभी जब सुदर्शन चक्रधारी हो तो फिर राहु केतु क्या करेंगे भगवान? अरे टेंशन नहीं, ज्योतिष विद्या लेके घूमते रहते लोग, राहु चढ़ गया जी, शनि चढ़ गया, आजकल तिल चढ़ा रहे, आजकल शनि महाराज के मंदिर जा रहे। जिसका सुदर्शन चक्रधारी जीवन में हो उसके अंदर नो प्रॉब्लम, ओनली रेलिश रेलिश रेलिश। जी मतलब
भगवान थे ना, चाहे मुनि रूप में थे, तो उन्हें क्यों नहीं पता चला ये असुर है? को पता चला
ये सब कुछ, भगवान को पता होता है।
हाँ, वो क्या
ये आनंद कैसे आएगा सुन के? ये इसके पीछे कारण है। महाप्रभु का जब पूछा गया, मैं पढ़ रहा था चेतन चरितामृत में, कि सन्यास क्यों लिया महाप्रभु ने, वो तो भगवान थे, वो चाहते तो किसी भी को भी भक्त बना सकते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपनी लीलाओं के द्वारा टीचिंग्स देना चाहते हैं। रामचंद्र जी क्यों रामचंद्र बनते हैं, महाप्रभु क्यों महाप्रभु बनते हैं? तो अभी पिछले दो दिनों में दोनों बार मैंने भागवतम पढ़ा तो रामचंद्र जी की लीलाओं में आया रामचंद्र जी क्यों पढ़ते हैं, और चेतन महाप्रभु का चेतन चरितामृत पढ़ा तो उसमें भी वो आया चेतन महाप्रभु क्यों बनते हैं। मैंने कहा दोनों में वही चीजें आ रही है एग्जैक्टली। तो चेतन महाप्रभु ने कहा कि मैं जब चलता हूं तो लोग जो हरिनाम के प्रति श्रद्धागत है वो भक्त बनते हैं, लेकिन जब मैं ग्रस्त जीवन में हूं, लंबे लंबे बाल है, और मैं लोगों से कहता हूं जपिलो श्री कृष्ण नाम, जपिलो श्री कृष्ण नाम, तो जपते नहीं है लोग। वो कहते हैं कि अरे आप कोई साधु हो जो आपकी बात माने, आपकी भी तो पत्नी, आपके भी तो बच्चे हैं, आप भी तो हमारे तरह लिप्त हो ग्रस्त जीवन में। इस कारण से महाप्रभु ने अपने स्वेच्छा से अपनी पत्नी लक्ष्मी का त्याग कर दिया ताकि परम करुणामय भगवान दूसरों को भक्त बना सके। कि सारे सैफ्रॉन कपड़े देखेंगे ना तो अपने आप ही शरणागत हो जाएंगे। तो महाप्रभु ने लिखा, शास्त्र में आता है कि कोई इंटेंशन लेस भावना से पूर्ण ना भी हो, लेकिन महाप्रभु के सामने अगर आकर सन्यासी सोचकर, मनुष्य सोचकर भी प्रणाम करता है, उसको भगवान अहेतु की कृपा करते बिना किसी हेतु के। ये ट्रांसेंडेंटल रीजन ऑफ चेतन महाप्रभु गेटिंग सन्यास, लिखा प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी भी भक्त नहीं, ये बनना नहीं चाह रहे थे सन्यासी, तो उनको बोला जब आप विदेश जाएंगे कोई आपको सरेंडर नहीं होगा, सैफ्रन कपड़ों के आगे जल्दी लोग सरेंडर हो जाते हैं। हम तो बोल बोल के रहते हैं व्हाइट कपड़े, इसलिए कोई सरेंडर ही नहीं होता। समय आएगा सैफ्रन, एक मिनट बात बता रहा हूँ उसके बाद आपका सुनूंगा। और रामचंद्र जी का मैं सोच रहा था क्या कारण है, तो उसमें भागवतम में वही प्रसंग आया कि रामचंद्र जी के पांच कारणों के कारण रामचंद्र जी भगवान का मनुष्य रूप लेते हैं। रावण को ये शक्ति प्राप्त थी रावण को कि वो मरेगा तो इस व्यक्ति से मरेगा जो व्यक्ति भगवान के जैसी शक्तिशाली हो। तो भगवान की शक्ति किस में हो सकती है? लेकिन होना चाहिए वो मनुष्य रूप में। तो उसे ये पता था कि भगवान कभी ऐसा तो करेंगे नहीं कि मुझे मारने के लिए मनुष्य रूप धारण करके 14 साल कांटों के अंदर घूमेंगे, 12 साल अपने चित्रकूट में काटेंगे, और अपने कई वर्ष वहां गुजारने के बाद में अरण्यकर्ण वनों में अनेकों दुख दर्द झेलेंगे। ऐसा तो मेरे लिए करेंगे नहीं भगवान कभी भी। भगवान तो अगर मुझे मारना चाहेंगे तो डायरेक्ट चक्र फेंक देंगे और मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा तुम अगर ये है ना तो मैं मनुष्य रूप में आऊंगा और सब कुछ सहन करूंगा। भगवान चाहे तो क्या पुल ऐसे बना दे, ऐसे बोले पुल बन जाए, जो सृष्टि बना सकते हैं, ब्रह्मांडों को जादूगर की तरह उछाल सकते हैं, वो एक पुल नहीं बना सकते? बैठे हैं टेंशन में क्या करूं कैसे पुल बनाऊं, मनुष्य लीला। तो भगवान वही बता रहे हैं कि अनेक रावण को मारने के लिए मनुष्य की जरूरत है जिसके अंदर भगवान नारायण जैसी शक्ति हो, तो ऐसा तो नारायण के अंदर था। तो फिर केशव देता राम शरीर, रामचंद्र बनकर भगवान केशव आते हैं। दूसरा कारण उनका था रामचंद्र जी का कि रामचंद्र जी ये सिखाना चाहते थे कि जो व्यक्ति विवाह करेगा वो टेंशन में रहेगा। प्रभुपाद जी ने लिखा, मैं नहीं बोल रहा, भागवतम का, जो व्यक्ति विवाह करेगा वो टेंशन में रहेगा। देखो अगर मेरी शादी नहीं होती तो आराम से राक्षसों का वध करता और विश्वामित्र के आंगन में घूमता और अपने भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ में क्रीड़ाएं करता, राज्यपाट संभालता, पिता का साथ मिलता। ये कहां जंगलों में भटक रहा हूं, एक शादी के कारण ही तो भटक रहा हूं। और फिर उन्होंने सिखाया कि ये भी कारण था भगवान राम का लीलाएं करने का कि जो देवी सीता है अगर ऐसी कोई पत्नी मिल भी जाए सती, तो फिर उसके लिए अगर कुछ करना भी पड़े तो फिर उसकी सुरक्षा करने के लिए रात दिन एक कर दूंगा, जहान एक कर दूंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, बोले नहीं कर भी दे। तो वो भगवान ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, तो उसके लिए भी भगवान आते हैं, तीसरा कारण भगवान का। और एक कारण ये था, भगवान ये सिखाना चाहते थे कि एक मनुष्य रूप में व्यक्ति को कौन सी मर्यादाओं का संस्कारों का पालन करना चाहिए, तो ये भी भगवान सिखाना चाहते थे। और ये सिखाना चाहते थे, पांचवा कारण उन्होंने बताया कि जो भक्त होते हैं सीता मैया, उनके ऊपर कभी कष्ट नहीं आते क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी उनका पालन करने वाला है। अरे तो कष्ट नहीं आते तो सीता को उठाकर रावण कैसे ले गया, लोग प्रश्न पूछते हैं। तो सीता मैया को रावण ले ही नहीं गया क्योंकि जब सीता को उठाने के लिए रावण आया तो भगवान तो पहले से ही जानते थे, लेकिन फिर क्यों उठवा रहे हैं? वो इसलिए उठवा रहे हैं कि मारेंगे कैसे रावण को, किस पॉइंट पे मारेंगे तो फिर मार नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने जब कुटिया के अंदर चित्रकूट में भगवान और सीता मैया रहते थे तो उन्होंने अग्निदेव को बुलाया और कहा, अग्निदेव माया सीता प्रकट करो और जो स्वतः सीता ओरिजिनल लक्ष्मी इसको आप अग्नि में प्रवेश कराओ और अग्नि में प्रवेश कराकर इसको आप अपने साथ प्रोटेक्टेड रखो और जब समय आएगा तो मैं आपको रिकॉल करूंगा। तो वो तो देवता है, भगवान के आगे बोले जी भगवान और अपनी सेवा में सिक्योरिटी में दे दिया बॉडीगार्ड्स के साथ में अग्निदेव के पास, जो आए उसे जला देना। और इधर माया सीता को कहा तुम जाओ और जाकर क्या करो, भिक्षा प्रदान करो। और वो आ गए भिक्षा देव, रावण तो बड़ा खुश हो रहा है, मैं सीता को उठा रहा हूँ, आ जा पुत्री उठा के ले जा रहा है, उसे पता ही नहीं है ले जा रहा है जिसको, वो तो माया है, वो है ही नहीं ओरिजिनल सीता। और इसी के कारण जब इतने समय वो रही वहां पर तो कौन रही, माया सीता। तो भगवान भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते, सीता मैया लक्ष्मी भगवान की भक्त है, उनका चरण दबाती है, पति की सेवा करते हैं, इसके कारण उनको सुरक्षा प्रदान करी गई। और फिर जब रिटर्न आए रावण का वध करके तो फिर उन्होंने कहा लक्ष्मण के सामने अग्नि परीक्षा देनी होगी। अभी लक्ष्मण क्योंकि ओरिजिनल विष्णु नहीं है, विष्णु का एक्सपेंशन है, तो कॉन्फ्यूजन हो गया उनको। वो बोले आप भाभी के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप सीता वो के साथ ऐसा कर रहे हैं, माँ है वो मेरी, ये है वो, तू चुप कर बहुत बोल रहे है, करने दे। तो फिर जब अग्नि आई ना किसी को दिखाई नहीं दिया, अग्नि प्रकट हुई, अग्निदेव को उन्होंने कहा ले जाओ अपनी माया सीता और मेरी ओरिजिनल सीता मुझे वापस दे दो। तो ओरिजिनल माया सीता उसमें प्रवेश कर गई और ओरिजिनल सीता का हाथ पकड़ के उन्होंने वैलेंटाइन में जैसे पकड़ते हैं और पकड़ के लेकर आए और फिर कहा बैठिए पुष्पक विमान के अंदर। तो ये तो भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं पांचवा कारण भगवान राम का था कि वो भक्त की सुरक्षा दिखाना चाह रहे हैं कि एक भक्त जो है ना उसके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली लाइफ में। तो इसलिए बिंदास होकर लाइफ जीनी चाहिए, जपो हरे कृष्णा बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, जपो और प्रसन्न रहो बस। प्रभु जी का प्रश्न है।
प्रभु तो ये मतलब एक क्या कहने हैं, दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं, जैसे भक्ति में आने के बाद कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको हरि नाम पे सत्संग में भगवान में माला में उतना भरोसा नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर खोल के कुछ ज्योतिष झोला छाप होते हैं वो उनको पूरा बताते हैं आलू को ऐसे करो, हल्दी ऐसे लगाओ, फूल ऐसे करो, उनमें दे बिलीव मतलब डू इट स्ट्रांगली मतलब पूरा कन्विक्शन से करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश है आपका?
मेरा संदेश, मैं संदेश वाचक नहीं हूँ मैं तो प्रभुपाद जी के भगवद गीता पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने उसको जो समझा हूँ वो समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ज्योतिष में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। कोई व्यक्ति कहते हैं और रामायण का दोहा है, आनंद प्रभु जी बता सकते हैं कौन सा है, कि ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी है, सुना आपने, ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, हरण सीता का मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्म गति तारे नाय। तो कर्म की जो गति है, जो करके आए फॉर एक्शन रिएक्शन, वो आपको भोगना पड़ेगा। ये चीज सिखाने के लिए भगवान राम सीता अपनी ये कष्ट सहन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लीला करने के लिए। भगवान को सब कर सकते हैं, कुछ भी चाहे, जरूरत क्या है, आपको ये आनंद प्रदान करने के लिए भगवान बता रहे हैं कि इतना सब कुछ किया, ऐसे सोचा गया ऋषि वशिष्ठ, ऋषि इतने ज्ञानी, राम और सीता जैसी उत्तम जोड़ी, 36 में से 36 गुण कोई नहीं मिलते, अरे बोल मैरिज, मैरिज होते ही बाहर निकलते एक्साइल, वनवास मिल गया। हरण दशरथ, हरण सीता का हरण हो रहा है, मरण दशरथ का, पिताजी की मृत्यु हो रही है, कैसा विवाह हुआ, अरे कलमुई कौन सी आ गई तू घर में, तेरे आते ही से टेंशन क्रिएट हो गई। तो सोचे अगर कोई गति शास्त्रों को, कर्म गति तारे ना है तेरी, कर्म की गति को कोई नहीं काट सकता, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये वही बोले एस्ट्रोलॉजी इज रॉन्ग, नो एस्ट्रोलॉजी इज राइट, एस्ट्रोलॉजी इज परफेक्ट।
नहीं जब कर्म गति तारे ना ही तेरी, इसमें आप कैसा भी करें, जो चीज डिस्टाइन है, आप कितना भी अच्छा कर्म करें,
नहीं उसमें वो कर्म गति का यही है कि सिचुएशंस विल कम। जैसे अब रामचंद्र जी के सामने सिचुएशन आई सुपन खा, सिचुएशन है ना, भगवान ये भी तो दिखा रहे हैं, सिचुएशन आई सुपन खा, कह रही है मैं तो इससे सुंदर हूँ, इससे क्या मिलेगा, ये तो वैसे ही 12 साल बिना पॉन्ड्स लगाए देखो कैसा चेहरा होगा इसका। मैं तो रोज पॉन्ड्स लगाती हूँ, अभी अभी आई हूँ लंका से, हमारे यहाँ तो गोल्डन क्रीम मिलती है, लोरियल लगा के आई हूँ, मुझसे विवाह कर लो, शहनाज हुसैन लगाकर आई हूँ। तो तुरंत भगवान ने उसको कहा नहीं, मैं नहीं, मेरा भाई तैयार है, वो तो उसकी पत्नी दूर है, मेरे तो साथ में है। तो लक्ष्मण भी दिखा रहे हैं कि पत्नी दूर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चालू हो गए और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया सूपनखा के साथ में। ठीक है तुम राक्षसी नहीं बनोगी, ऐसी रहोगी तो मैं ठीक हूँ, आ जाया करो कुटिया में। तो ऐसा भी उन्होंने कहा, बस बहुत हो गया, मेरे भ्राता के सामने मुझे तुम उधर ना कर दी। तो ऑप्शन आ रहे हैं ना हमेशा, चूज करके फिर आप आगे भी प्लान कर सकते हो। कर्म की गति से आपको सिचुएशन मिलेंगे, वनवास जाना है सिचुएशन है। अब वन में कैसे जिएंगे, शराब पी के, चिलम पी के या भजन करके, आपके पास ऑप्शन भगवान ने दिया। तो सिचुएशंस आर विल कम अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी, बट हाउ टू एक्ट ऑन द सिचुएशन इज ए फ्री विल गिवन बाय गॉड। तो ये शास्त्र है, ये जैसे ये है आपका ज्योतिष शास्त्र, ये गलत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र तो सही है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र को बदलने वाली बातें करने वाले लोग गलत है कि हम ज्योतिष शास्त्र से बदल देंगे। आपके जी जीवन में मार्केश लिखा हुआ है, आपकी 8 साल बाद मृत्यु हो जाएगी, और खुद 15 दिन बाद मर जाओ उसे पता नहीं है, और सामने वाले की 8 साल बाद मृत्यु बता रहा है। आपको जी क्या करना पड़ेगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मार्केश टल जाता है, जो मंगल है वो आपका प्लैनेट चेंज कर जाएगा, एरिया चेंज कर जाएगा। अष्टम ग्रह जो मृत्यु का ग्रह है, वहां से निकल कर वो नवम भाव में चला जाएगा, ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। ऐसे बोलेगा तो मेरे को एक बार पूछ लिया था मैंने, कहा अगर कोई व्यक्ति महामृत्युंजय जाप करता है तो इसका मतलब उसकी मृत्यु नहीं होगी। कह रहे नहीं, वो टाल दिया ना हमने, 8वें घर से निकाल के मंगल को 9वें घर में छोड़ दिया, 8वां घर मृत्यु का था क्यों? ठीक है, मैंने कहा कि बिल्कुल गलत है। कह रहे कैसे? मैंने कहा जो घिर लिख कर आया 8वें घर में तो रहेगा, आप कैसे निकाल सकते हो? बोले नहीं, हमने मंत्र जपे तो उसकी अट्रैक्शन से वो 9वें भाव में चला गया, मृत्यु टल गई। मैंने कहा तो फिर आप ये सरकार को क्यों नहीं बताते हो? सरकार को बताओ कि असला बारूद भी इतना पैसा खर्च कर रही है, सारे खड़े हो जाए आर्मी के बॉर्डर पे और सब लोग क्या है, महामृत्युंजय का रिकॉर्डर लगा लें और मुंह में सबको महामृत्युंजय ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग में महामृत्युंजय सिखाया जाए, जैसे गोली मारे वहां सामने पाकिस्तान वाला सी हो जाए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधेम पुष्टि वर्धनम, तो गोली आएगी वापस चली गई गोली, अरे वो बच गए, अरे बोल। पर ऐसा हो सकता है, लिखा है तो टॉक से आगे लग जाती है, वो बचने वाला नहीं है। तो मंत्र कैन नॉट सेव योर बॉडी, मंत्र कैन सेव योर सोल, मंत्र कैन सेव योर सोल एक्चुअली।
ये कर्म की गति कब तक चलती रहती, कब तक रिएक्शन आते
हैं, कब तक शरीर में रहेंगे?
अकर्म करता रहे व्यक्ति तभी भी खत्म ही नहीं होंगे,
अकर्म कर ही नहीं पाता,
कर नहीं पाते,
पाएंगे वो आते रहेंगे जब तक।
ये इंसिडेंट उसके शाहजहां उसके साथ हुआ था
क्या,
जब ये लोग यहाँ से गए मुल्तान पर हमला करने के लिए, जो भी बादशाह था इसका नाम जहांगीर, तो इसने उनको बोला कि जाकर के मुल्तान पे कब्जा करो, और ये सब गए तो उन्होंने बोला कि कब्जा करने के लिए बहुत ऊंची पहाड़ी, इस पर चढ़ नहीं पाते, तो उन्होंने बहुत सारे टोना टोटका करने वाले लोगों को बुलाया कि जादू मंत्र करेंगे, उनको सबको मार देंगे, एंड दे कंटिन्यूड फॉर 4 मंथ्स, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जहांगीर ने उसको बोला, शाहजहां को मैसेज किया कि तू बेवकूफ बना रहा है, तो उसने बोला ठीक है तुम सब मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, पकड़ के दिल्ली लेके आया सबको जेल में।
तो वही है
एक और प्रभु जी इसमें आंसर है, जैसे लॉ ऑफ कर्मज में जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि टला नहीं जा सकता। एक तो ये है कि अभी जो में जो सुख या दुख मिल रहा है वो रिजल्ट है हमारे पास्ट कर्मज के। जब हमें पता है कि अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा मिल रहा है, ये इतना पता चल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, जो होना होगा वही होगा। इसका लर्निंग यही है कि हम ऐसे अब ऐसे कर्मज करें जो पिछला कुछ भी गलत है वो भी बेहतर हो जाए और आगे कुछ हमें साइकिल में ना आना पड़े
ना। इसमें इसको समझना पड़ेगा चीजों को कि है ना, पाप भी कई प्रकार के हैं। हाँ, पाप भी कई प्रकार के हैं। जब ही बोया वो काटना है। फ्रूट लगाए थे, पेड़ लगाया मान लीजिए सेब का, पेड़ लगाया आम का, पेड़ लगाया तुलसी का, इसकी ड्यूरेशन ऑफ फ्रूट अलग अलग है। कभी किसी का तुरंत आता है, मिर्ची का पेड़ लगाते आ जाता है, नींबू का पेड़ लगाते आ जाता है, आम के पेड़ में टाइम लगता है, सेब के पेड़ में और टाइम लगता है। तो इस तरह से बहुत टाइम के बाद कोई चीजें आती हैं। तो हो सकता है जैसे आपने प्रार्थना करी, जब शुरू किया तो आपने अपने आम के पेड़ के सारे फल काट डाले, अभी सेब की तरह तो ध्यान ही नहीं है, अचानक चल रहे हैं एकदम से प्रॉब्लम आ गई, वो क्या हुआ, सेब का पेड़ का फ्रूट भी पक गया, आपके आके झोली में गिर गया, क्या कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कूटम बीजम और पापम, 3 प्रकार के पाप है।